نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دور قرآن 2020-2020 آج اس میں سے ہم کریں گے پارا نمبر 23 یہ پارا سورۃ یاسین کی آیت نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے پھر اس میں سورۃ صافات اور پھر اس کے بعد سورۃ سوات اور پھر سورۃ زمر کا کچھ حصہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ہی پارے کے اندر کئی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت میرے حساب میں ایک بچے کی طرح ہے جس کا ایک اپنا مزاج ہے اس کے اپنے رنگ ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں اتنی برکت ہو کہ کم از کم ہر صورت کا مزاج سمجھ سکے پھر انشاءاللہ بہت وقت ہے آگے بھی اللہ نے موقع دینے ہیں ہمیں پھر نیتیں کرتے جاتے ہیں کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج دور حاضر کے فتنے اور ان کے حل کے تھیم کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے پارا نمبر 23 میں کیا ہے کیونکہ جتنا زیادہ ہم ان کو اپنے تھیمز کے ساتھ سمجھیں گے اور سمجھ رہے ہیں الحمدللہ اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو بہت ہی دل کو دکھی کرنے والا اور کہہ لیجئے کہ وہ ٹاپک ہے کہ جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اللہ کی قدر ہو جاتی ہے اور اللہ کا صحیح مقام سمجھ میں آنے لگتا ہے تو اس کے بعد اس موضوع پہ بات کرنا نہ تو کوئی طنز کے لیے ہوتا ہے نہ تمسخر کے لیے ہوتا ہے اور نہ صرف چسکے کے لیے ہوتا ہے یہ دل کے اندر اٹھنے والے وہ جذبات ہیں کہ جو ایک اللہ کی محبت میں چور انسان والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مصداق اس شخص کے دل میں اس وقت ابھرتے ہیں جب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ والی خوبیاں دوسروں میں دیکھنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کا انداز ہونا چاہیے وہ اللہ کے ماں سوا کے ساتھ ہونے لگتا ہے اور بعض دفعہ توحید ربوبیت کے مانتے مانتے شرک فل حکم کرنے لگتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہے اللہ کی طرف بلاتے بلاتے بعض دفعہ لوگ اپنی طرف بلانے لگتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی داعی دین ایسا کرے تو فتنہ ہے اللہ سے جوڑنے کی بجائے خود سے جوڑنے کا فتنہ آپ آسان سمجھنا چاہیں تو شخصیت پرستی کا فتنہ کہہ لیں اور زیادہ انگلش سے فیمیلیئر ہیں تو پرسنالٹی ورشپ کا فتنہ ہے ہم اس بارے کے بالکل شروع میں حبیب نام کے ایک شخص کا قصہ پڑھ رہے ہیں نام اس کا حدیث میں ہے یہاں صرف اس کو اللہ نے ایک خوبصورت کردار کے طور پر پیش کیا کہ جب اس نے اپنے ارد گرد خرابی دیکھی ایک نہیں دو نہیں تین رسولوں کا انکار کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے لوگوں کا رنگ ڈھنگ کیا ہے خاندان کیا چاہتا ہے برادری کیا چاہتی ہے بلکہ جہاد باللسان کی ایک تصویر بنا اور اپنے ماحول میں آ کر اعلان حق کر دیا جو ہی اس نے حق کا اعلان کیا لوگوں نے اس کی جان لی فوراً اللہ نے اس کو جنتوں میں داخل کر دیا جنت میں جانے کے باوجود بھی اس کے دل میں ان لوگوں کی خیر خواہی ختم نہ ہوئی کہ کوئی بات نہیں مجھے مار ہی دیا نا پھر کیا ہوا میں تو شہید ہو گیا لیکن کبھی اللہ تعالیٰ ان کو میرا پیغام دے دے کہ میرے رب نے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کہ کبھی ان کو کوئی دکھا دے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور میری کتنی عزت کی تو شاید یہ میرا اچھا انجام دیکھ کر ان لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے اور یہ شرک چھوڑ دیں یہ ہے وہ دین دار جو اللہ سے جوڑتا ہے جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے لا اللہ کا باخ یون نفس کا اور فلا اللہ کا باخ یون نفس کا دو صفات ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اللہ کے نبی کی ایک سورت کہف کے شروع میں اور ایک سورت شعرا کے شروع میں تو یاد رکھیے سچا داعی دین جس کو آپ مبلغ بھی کہہ سکتے اور اپنے دور کا رسول اور نبی بھی تھا اور آج وہ تبلیغ کرنے والا بھی ہے اور وہ تعلیم دینے والا بھی ہے جب وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پاتا ہے اور اس کو اس کا یقین ہوتا ہے کہ دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس کی پوری انرجیز پوری کوششیں اس بات پہ ہوتی ہیں کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں ایسے شخص کی بات میں اللہ وزن بھی ڈال دیتا ہے اثر بھی دے دیتا ہے اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایک درد دیتا ہے یہ وہ درد ہوتا ہے کہ جو اس کو دوسروں سے مختلف کر دیتا ہے اور وہ ایک رسمی کلامی مبلغ نہیں رہ جاتا بلکہ اس سے بڑھ کر وہ لوگوں کا خیر خواہ اور سنجیدہ انسان بن جاتا ہے ابتدا میں عموماً لوگ اسی طرح سے کام شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ قرض ہے ہر بندے کے دل میں روز اتنے میسیجز آتے ہیں ہم کیا کریں ہمیں کچھ کرنا ہے ہم سے کچھ خیر لے لیں ہمیں کچھ دے دیں تو میرا دل پسیج جاتا ہے اپنے ان ساتھیوں کے وہ میسیجز دیکھ کر پڑھ کر کبھی سن کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دے کسی چیز سے آج یہ قرآن کی سیڑھی پہ چڑھے अपने लिए कुरान को सीखने के लिए फैसला करें, सबीलुल जन्ना में आ जाएं। देखिएगा चंद सालों के बाद कैसे सच्चे दाई दीन बनता है। याद रखिए, सच्ची तालीम के बाद जो दाई बनता है वो रब से जोड़ता है, और जो सिर्फ चंद मोजज़ों, करामतों और इंसान के नफ्स को लुभाने वाली चीज़ों को सामने रख कर लोगों को तबलीग करने लग जाए या लोगों में उसका कोई भी नाम हो जाए, बिल आखिर वो रब से नहीं लोगों से जुड़ने लगते हैं। तो शख्सियत परस्ती एक बहुत बड़ा मौजू है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ना सिर्फ ये है कि दीन के नाम पे है, हमारे कल्चर में ये शुरू से ही था। भी आज कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे अभी, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि शख्सियत परस्ती आज से नहीं है, ये हज़रत नूह के दौर से है और शायद क़यामत तक रहेगी, लेकिन ये दुनिया में भी होती है। यानी जब आप किसी को अंधाधुन फॉलो करने लगे, वो कहाँ जा रहा है, वो किधर जा रहा है, उनको फॉलो कर रहे हैं, जिसको आप फैन होना भी कह सकते हैं, चिपका होना भी कह सकते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अदाकारों, गुलकारों, क्रिकेटर, सियासतदानों, यानी उनकी पर्सनल ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं। कि हत्ता के बाद ख़वातीन को देखा गया कि बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर आने वाली हैं, लेकिन जब बाज़ारों में जाएँ तो निकाब करके जाएँ कि कभी लोग हमें पहचान न लें। और ऐसे ही लोगों में से किसी की एक बात याद आ गई कि दिल चाहता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं जाऊँ और मुझे कोई ना देखे, यानी इसमें शोहरत का फितना भी है। असल में ये शख्सियत परस्ती आज शोहरत परस्ती में बन गई। तो आइए देखते हैं सच्चा दाई दीन अल्लाह से कैसे जोड़ता है, और इसके बरक्स ना चाहते हुए भी नीयतें अच्छी होती हैं, जो जुड़ रहे होते हैं वो भी दीन समझ के जुड़ते हैं, और अमूमन कुछ लोग इल्म ही वो ले चुके होते हैं जिसके बाद वो सब कुछ जायज़ होता है। यानी उस बुज़ुर्ग को सजदा करना भी जायज़ है, उसके आगे रुकू की तरह झुकना भी जायज़, उसके ऊपर पैसों की बेलें देना भी जायज़ होता है, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ नॉलेज ठीक नहीं होता। देखिए, मैं इसमें किसी एक को भी नहीं कहूँगी कि बुरी नीयत से करता है। असल चीज़, जो असल फ़ैसला है, वो ये है कि आपने सीखना कहाँ से है। तो सच्चा दाई दीन, अगर एक वक्त आता है कि वो सच्चा मुबल्लिग़ दीन बनते बनते तालीम दीन देने लग जाए, वो उस्ताद के दर्जे पर आ जाए, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कुछ चीज़ों से। और एक हल्का सा मेयार जिसके लिए आपको बहुत कुछ सुनने समझने की भी ज़रूरत नहीं, किसकी बात सुन के अल्लाह से जुड़ती हूँ और किसकी बात के बाद अमल तो चेंज नहीं हो रहा, अल्लाह से तो जुड़ नहीं रही, आखिरत का खौफ तो आ नहीं रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम की तो कोई समझ नहीं। हाँ, लेकिन उनका पल्लू थामने को दिल करता है, उठते बैठते उनसे मोहब्बत भरी बातें, डायलॉग, और उनको बड़े बड़े जज्बाती अशार कह के करने, और ये पलकें झुकानी और ये करना, तो समझ लीजिए कि वो रास्ता ठीक नहीं है। हुआ क्या कि नस्ल दर नस्ल शख्सियत परस्ती का वायरस ऐसे मुंतकिल हुआ कि आज इसकी वो शक्ल हमारे सामने आ गई जो अल्लाह ही पहले नहीं थी। आज के पारे को पूरा सुनने के बाद आप खुद भी इस चीज़ की इंशाल्लाह गवाही देंगे। शख्सियत परस्ती इंसान को सोचने समझने से ही नहीं बल्कि अमल करने से भी महरूम कर देती है। लेकिन अगर मेरे ब्रेन में आपका ब्रेन लगा दिया जाए, आपका ब्रेन मेरे में लगा दिया जाए, तो फिर मेरी सोच आपकी और आपकी मेरी हो गई। पता नहीं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल क्या होगा कि आपकी मेरे में लगकर पता नहीं मैं आप जैसी भी ना रहूं। तो जब आप अपना स्टेयरिंग किसी और के हाथ में दे दें तो गाड़ी खतरनाक हद तक खतरे में चली जाती है। इसी तरह शख्सियत परस्ती पूजा करने वाली कैफियत है ये, क्योंकि परस्तिश किसको कहते हैं। और यहाँ पे एक जुमला लिख लीजिए, आपका परस्तार, लोग गुलकारों को और अदाकारों को भी कहते हैं। परस्तार कौन होता है? परस्तिश करने वाला। परस्तिश क्या है? इंग्लिश में जाके देख लीजिए, वर्शिप करना। वो बंदा जो या कना बुद या कनस्तीन का दावा करे दिन रात, क्या वो किसी और का परस्तार हो सकता है? तो ये तो जुमला हमारे यहाँ कितना मारूफ है। तो वहाँ तो वो हुसन के नाम पे, फन के नाम पे, ग्लैमर के नाम पे किसी की पूजा करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग दीन के नाम पे भी यही करते हैं। पैरोकार अपने अपने लीडर की शख्सियत को पूज रहे हैं माजरत के साथ, बाज़ दफ़ा तो इस हद तक पूजने लग जाते हैं कि अगर वो कोई गलती करते हैं तो हम भी करेंगे, क्योंकि वो बड़े हमारे ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। उनके एक ख़ास दीन का अमल का अंदाज होता है। देखिए, सही दीन देने के बावजूद भी सारे पूरे दीन पे अमल नहीं कर पाते। वो मानते हैं कि हम सही दे रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। लोग कहते हैं, नहीं वो नहीं करे तो हम भी नहीं करेंगे। बस जिस हद तक उनका पर्दा है, उसी हद तक हमारा पर्दा है, और सो ऑन। तो ये असल में ब्लाइंड फॉलोनेस होती है। अब आप ये कहते हैं कि अच्छा, फिर अपने उस्तादों की बातों को ना सुने और ना समझें, तो यहाँ सबसे बड़ा फैसला करके उठिएगा आज कि उस्ताद बनाना किसको है। जब व्हाट्सएप हमारा उस्ताद बन गया, फेसबुक हमारा मदरसा बन गया। मैं अक्सर सोचती हूँ लोगों के सोर्स ऑफ नॉलेजेस को देखकर कि हर इल्म वाले से लोग अक्सर पूछते हैं, आपने कहाँ से पढ़ा? तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास एक मोहब्बतों भरी और चाहतों भरी एक लंबी लिस्ट होती है, मैं उस इदारे में गया, मैंने उस उस्ताद से फ़ायदा उठाया, मैंने उन शेख से पढ़ा, मैंने उनसे पढ़ा। खुशी भी होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन कल के दौर में जो लोग अपना सोर्स ऑफ नॉलेज, अपना मदरसा देंगे, कहीं वो गूगल शेख तो नहीं होगा जिस पे हर एक ही बैठा हुआ है। आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं, एक आलिम गूगल से फ़ायदा उठाए, बहुत ज़्यादा उठाएगा। उसका वो वक्त जो घंटों के एतबार से लगता था किसी एक बात को ढूंढने में, वो चंद मिनट में ढूंढ लेगा। लेकिन आप मेरे जैसा कोई शख्स अगर, जिसको भी अलिफ बे नहीं पता, वो जाकर चेक करे। एक बच्ची ने मुझे कहा एक आध साल पहले कि मुझे एक डाउट था कि मैं चेहरे का पर्दा करूं कि ना करूं, और मैंने कहीं सुना कुरान में, जैसे आपको होता है कि अक्सर कुरान के सफ़र में आती हैं सूरत अहज़ाब में ये बातें, तो मेरे दिल में अर्ज आई और मैंने कहा कि बस मैंने ये करना है। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा, अच्छा नहीं तुम ज़रा और भी सुन लो, इनकी बातें क्यों सुनती हैं, कहाँ से सुने, गूगल पे जाएं। कहती मैंने गूगल से जाकर ये चेक करना शुरू किया कि फलां पर्दा है कि नहीं। अल्लाह की बना यकीन कीजिए कई चीज़ों में वो पहले से भी पीछे हो गई। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तो याद रखिए, अच्छे उस्तादों से पूरी तरह फ़ायदा उठाएं, उनकी हर बात को कुरान और सुन्नत के क्राइटीरियन पर परखें और उनसे फ़ायदा उठाएं। बस उस्तादों के गुण गाने की बजाय उनके लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बन जाएं, ये है उनसे मोहब्बत का दावा। तो हमारा मकसद हमारी ज़ात से बुलंद होना चाहिए। सवाल पैदा होता है कि शख्सियत परस्ती है क्या? एक कोट आपके सामने रख देती हूँ। हक और इंसाफ और अक्ल व फिक्र के तकाज़ों को बालाए ताक रख कर, यानी हक भी पाँव में कुचला जाए तो कुचलने दीजिए, इंसाफ रुला तो रुलने दीजिए, अक्ल और फिक्र में वो बात आए ना आए, आप सब चीज़ों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। और उसके बाद किसी शख्सियत से ऐसी मोहब्बत करना कि इसके कौल व अमल को शरीयत और सुन्नत से ज़्यादा अहमियत देते हुए इसकी अंधी तकलीद करना शख्सियत परस्ती है। सीधी सी बात बता दूँ, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल का हक किसी और शख्सियत को दे देना, और वही गलती जो नसारा से हुई और पीछे हम सूरह तौबा में पढ़ चुके, कैदी बिन हातिम ने जब ये आयत पढ़ी कि इन्होंने अपने रुहबान और अपने उलमा को रब बना लिया, तो अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे मैं तो अपना कुछ दौर क्रिश्चियनिटी में गुजार चुका हूँ। तो कोई क्रिश्चियन ये नहीं कहता कि हमारे उलमा और हमारे रिब्बी जो हैं ये हमारे खुदा हैं, तो फिर ये कुरान ने क्यों कहा? तो अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम उनके हलाल करदा को हलाल और उनके हराम करदा को हराम नहीं कहते? यानी दलील मांगे बगैर उनसे बात सुनकर चल पड़ते हो? कहा ये तो हम करते हैं। फरमा यही है उनको रब बनाना। तो अब आप देख लीजिए कितना खतरा है दीन के नाम पे। ये तो ऐसे ही कि किसी मुल्क का बादशाह कोई और था और आपने किसी और का नाम लिख दिया, किसी एक मुल्क के वजीर या बादशाह या किंग या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जगह दूसरे का नाम लिख दिया, कितना बड़ा जुर्म होगा अगर किसी को ये पता चला। और याद रखिए कि ये आज की पैदावार नहीं है। अगर हम इंसानी शरीयतें जो पीछे से मुरतब हुई देखें, तो सबसे पहले साहबे शरीयत नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो बिगाड़ आया था, शिर्क जैसी पस्तियों में वो ऐसे डूबे और ऐसे गिरे कि उसके बाद उनको उठते उठते भी मुद्दतें लग गईं। शख्सियत परस्ती का मामला वहाँ से शुरू हुआ था। होता क्या था, मैंने पीछे भी थोड़ी सी बात उस दिन की थी जिसे शिर्क का मौजू था हमारे पारों में, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिए थोड़ा सा। चंद नेक लोग अपने वक्त के मुताबिक दुनिया में आए, इबादत करते रहे, बड़े फेमस थे। जब वो अपनी अपनी तबई ज़िंदगी पूरी करके जाने लगे, तो जब वो चले जाते तो शैतान उस जनरेशन के पास आकर कहता, देखो कल तक तुम इनकी वजह से अल्लाह की पकड़ से बचे हुए थे, अब ये चले गए हैं तो अब तुम पे अल्लाह की पकड़ आनी है, तो क्या करो कि इनकी शबीहें बना लो। शबीह होती थी चौक कोयले के साथ। अब वक्त के साथ वो मिटने लगी, कहा आप इसके स्टैचूज बना लो। फिर स्टैचूज बनाए, फिर कुछ अगली नस्ल के पास आया, कहा देखो ये कोने में पड़े रहते हैं, तो ऐसा करो जहाँ इबादत करते हो वहाँ अपने सामने रख लो इनको, और जितना ज़्यादा तुम इबादत में अल्लाह से मांगते हुए इनका तसव्वुर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उतना ही ज़्यादा देगा। इस तरह की बातें करते करते गलूफ और शैतान के बहकावों से निकल कर चीज़ किधर आ गई, इसमें आ गई जिसको आज आप और मैं शख्सियत परस्ती कहते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप और मैं अपनी ज़िंदगियों में ला कर देखें, तो हमें इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। तो जब आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये कोई नया मर्ज़ नहीं है, ये बहुत पुराना मर्ज़ है। और इसको देखने और पढ़ने और सुनने के बाद जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी में आता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो आप देखिएगा कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद एक बंदा अपने आप को कैसे देखे, किस तरह से देखे, और अपने आप को मुझे इस सारी चीज़ों के अंदर परखते हुए रखते हुए हमने इस चीज़ पे लेकर आना है कि मेरे मालिक तो हम पे रहम फरमा। ए अल्लाह, तू हमें दीन के नाम पे गुमराह ना करना। एक जुमला लिख लीजिएगा, किसी ने बहुत ही दर्द भरे दिल से कहा था कि पहले तो दुनिया के रंग में गुमराह थे ही, अब दीन के रंग पे ना करना। एक बच्ची थी क्या, लास्ट प्लेन से निकल कर आई, यानी हर वो नफ्स की इश्तिहा जो उस माशरे में हो सकती थी वो उसके अंदर थी, वहां से करते कराते गुजरते गुजारते दीन की तरफ आई। अब जब दीन में बंदा आता है तो दीन भी कई रंग का है, और किसी ने उसको इधर से उधर और उधर से उधर लुढ़काया, और उसके बाद उसने भी यही कहा था कि अल्लाह, मैं दुनिया के रंग में तो बहकी हुई थी, वो तो मुझे पता है, मैंने अपनी नफ्स की मस्तियां और बातें सारी सुन सुना ली, लेकिन अब मुझे दीन के रंग पे गुमराह ना करना। तो मैं भी आपको यही बात कहूंगी, आप भी तो बड़े एतमाद और भरोसे के साथ मेरी बात सुन रहे हैं। नूरुल कुरान का प्लेटफॉर्म आप में से बहुत सारों के लिए नया होगा, क्योंकि हमारा नाम कोई इतना मशहूर नाम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे फितनों से इंसान बचा होता है इन बातों पे, लेकिन याद रखिए कि यहाँ से भी जब भी कुछ लें तो मेयार यही रखिएगा, क्या आप इस प्लेटफॉर्म से आने वाली बातें, यहाँ से बात करने वाले उस्तादों की बात को सुनकर अल्लाह के करीब होते हैं या बंदों के। देखिए, फितरी सी बात है, इंसान को जिससे नफ़ा मिलता है उससे मोहब्बत होती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो माँ बच्चा, बच्चे को पता है मैं रोता हूँ तो यही औरत आती है मेरे सामने, और मुझे बीमारी लगती है तो यही दवा देती है, वो तो एक मोहब्बत है, वो तो उस्ताद शागिर्द में होगी, लेकिन उसकी भी लिमिट्स होती हैं। आप मोहब्बतों को नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन मोहब्बतों के इजहार के तरीके बदलने की ज़रूरत है। और लिख लीजिए कि शख्सियत परस्ती बुत परस्ती में ढलती है, यानी आपको एक आज बड़ा खूबसूरत सा जेम देना चाहूंगी कि शख्सियत परस्ती असल में बुत परस्ती है। कल के दौर में लोग बुत बनाकर उनको पूजने लग जाते थे, आज लोग जिंदा खड़े पड़े लोगों को पूजने लग जाते हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म की इज्जत और तकद्दस का ख्याल ना होता, और इसी तरह से अगर मुझे तशील फाहिशा का ख़तरा ना होता, और वही बात है कि आप कह लीजिए कि जिनको नहीं पता उनको भी पता लग जाए, मैं इसमें क्यों हिस्सेदार बनूं, तो यकीन कीजिए आज आपके साथ कुछ ऐसी कम अज़ कम चंद झलकियाँ शेयर करती कि जिसको देखकर आप खुद मान जाते कि शख्सियत परस्ती क्या होती है। नकले कुफर कुफर नाबाशित वाली कैफियत भी मौजूद थी कि दिखाया जा सकता है ऐसा कुछ, ताकि वो मासूम और भोले लोग जो आज इंसानों के सहर में मुब्तला हैं वो ऐसे काम ना करें। लेकिन मेरी अपनी गुनाहगार आंखों ने लोगों को सजदे करते कराते देखा, और इसी तरह से उनके ऊपर फूलों के हार और पता नहीं क्या रुपए नोट उछालते देखा। बुजुर्ग सामने बैठे हैं और लोग उनके आगे आते हैं और ऐसे सजदे करते हैं, और वो बड़े प्यार से उनकी कमरों पे हाथ फेरते हैं। धमाले मालता देख लीजिए, आज आप देखिए कि लोग दीन के नाम पर क्या कुछ करते हैं, यानी एक लीडर अपने बाल और साथ कुछ पैसे और कुछ मिठाई देकर लोगों में बांट रहे हैं कि ले लीजिए प्यारी शख्सियत के बाल ईदी में और तोहफे में। क्या आपके नबी ने ऐसा किया? सहाबे कराम से आपको ऐसी कोई एक भी मिसाल मिलती है? वो तो अल्लाह के नबी थे, उनका पसीना तो खुशबू था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के कतरे लोग खुशबू के तौर पे इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्या आप और मैं आज के दौर में ऐसा सोच भी सकते हैं किसी एक इंसान के लिए? अल्लाह ताला माफ़ करे, बाज़ दफ़त ऐसी शख्सियात सामने आती हैं जिनको लोग किसी ना किसी नाम से पूज रहे होते हैं, कई कई साल नहाते नहीं हैं, तो याद रखिए ये दुखी बात है। फिर एक क्लिप मेरे सामने था कि जिसमें पर मला लोग झूम झूम कर सुन रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं कि 10 साल पहले से एक बारात जो डूबी, एक औरत बेचारी दुखी थी, और एक बुजुर्ग जो वाकई बड़े नेक बुजुर्ग थे, मैं उनका भी नाम नहीं लेती, अल्लाह उनका अजर कायम रखे, लोगों ने आज उनके नाम पे कहानियां रखी हुई हैं कि दरिया के किनारे एक बूढ़ी औरत को रोते देखा, कहा क्या हुआ, कहने लगे एक ही बेटा था और ऐसे उसकी शादी करने आई थी तो वो बारात जो थी वो दरिया में डूब गई, 10 साल से रोज इधर आकर रोती हूँ। अच्छा, फौरन खड़े खड़े उन्होंने हुक्म दिया कि ये कैसे हो गया, एक औरत का फुला, और वो पूरी बारात जो थी वो दूल्हा समेत 10 साल से डूबी हुई बाहर निकली। वल्लाह की कोई बात ऐसी नहीं करूंगी जो मैंने देखी या सुनी ना, और उसकी रिसर्च ना की हो। हजारों लोग गवाह होंगे इन बातों के, कैसे लोग फूके मार मार कर माइक पर दम करते हैं, और हजारों लोग उनसे वो दम किया हुआ पानी ले जाकर झूमते और नाचते हैं। सहाबा ने नहीं ऐसा किया, मुझे तो ऐसी कोई सीरत की बुक सहाबा की किताब नहीं मिली कि इस तरह की हरकतें और छिछुरी हरकतें लगती हैं। खड़े हैं तो नाच रहे हैं और घूम रहे हैं और धमाल डाल रहे हैं, और वो बुजुर्ग खुद चाहे अल्लाह की तरफ झुकते हों तो ये लोगों की तरफ झुकते हैं, ये शख्सियत परस्ती है। कोई ये कहता है कि मैं दरिया के किनारे जाऊं तो मछलियां मुझे झुक के सलाम कहती हैं, और कोई कुछ कह दे, और कोई कहता है कि मुझे तो ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज्यारतें होती हैं, देखिए इतने दावे तो सहाबे कराम ने भी ना किए, इन चीज़ों से हुआ क्या? लोग हमसे जुड़ गए और अल्लाह से कट गए, हमारी इनके आगे और इनकी अल्लाह के आगे, और ऐसी ऐसी कहानियाँ जुड़ गईं कि बस हम तो इसी दर पे बैठे रहेंगे और ये हमें लेकर देंगे। याद रखिए पूरे दीन की बुनियादें हिल जाती हैं। अल्लाह के नबी ने 23 साल में जो खूबसूरत दीन दिया, असल में मक्का वालों की शख्सियत परस्ती को तोड़ने के लिए दिया था। लात मनात उज़ा यौग यगूस नसर, ये उनके पंचतन पाक थे कि जिनके नाम ले लेकर वो दुआएं मांगते और उनके साथ वसीले और न जाने क्या कुछ करते। तो यहाँ सूले दीन सिखाऊंगी। देखिए बात आपको मेरी भी तो सुन के गौर करना है कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। जिसने कभी ये बातें सुनी नहीं वो कहेगा ये पता नहीं कौन है। तो ठीक है आप थोड़ा सा सुनिए। आपको दीन के वो बेसिक्स जिसको आज उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द मानता है, हर मकतबा फिक्र मानता है और मानना पड़ेगा क्योंकि इस्लाम है ही ये, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये दावा करने वाला हर शख्स ये जानता है कि दीन के बेसिक असूल है। अल्लाह ताला की ज़ात तो शिर्क से पाक है, वो तो एक पूरी तौहीद की किताब है, इसको तो आपने मैंने पढ़ना ही है इंशाल्लाह। लेकिन इंसानों में देखे सबसे ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इताअत और पैरवी का हमें हुक्म है, गैर मशरूत और मुस्तकिल। ये नहीं कि रमज़ान में अल्लाह के नबी की बात मान ली और ईद के दिन छोड़ दी। और दूसरी बात है इसमें कोई शर्त नहीं रख सकते। क्यों ऐसा करें? अल्लाह का हुक्म है, हमारे ईमान का तकाजा है। अल्लाह के नबी सहाबा कराम के लिए ऐसे ही मोतबर थे कि उनकी बात सुनकर बस मानने को तैयार हो जाते थे लोग। इसके बरक्स कोई शख्सियत, हत्ता के वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी रसूल अनस बिन मालिक की तरह के क्यों ना हो, याद रखिएगा इनकी इताअत और पैरवी भी करेंगे, लेकिन उसमें शर्त है। नंबर एक, मशरूत है और गैर मुस्तकिल है। अल्लाह के नबी की तो हर बात माननी है, लेकिन बाकी शख्सियात जिसमें आइमा कराम भी हैं, मुहद्दिसीने कराम भी हैं, जिसके अंदर आज के दौर के मुबल्लिगीन भी हैं, दीन के नाम पे कोई टाइटल, किसी ने शेख का चुना, किसी ने पीर का चुना, किसी ने मुर्शिद का चुना, किसी ने उस्ताजा का चुना, किसी ने उस्ताद का चुना, किसी ने उसको शेखुल इस्लाम कहा या शेखुल ईमान कहा, याद रखिए नंबर एक गैर मुस्तकिल। मतलब ये बहुत बड़ी बात बताने लगी हूँ आपको, हर बात नहीं मान सकते आप किसी की। देखिए आज आइमा कराम के साथ जो नस्बत जोड़ते हैं ना, उनसे ये गलती हो गई। वो ये सोच लेते हैं अपने अपने इमाम के नाम पर कि उनसे कोई बात भी नहीं रह गई, ए टू जी पूरा दीन इस्लाम शरीयत हदीस उन्होंने बयान कर दी। हालांकि आइमा कराम के अपने अकवाल मौजूद हैं कि लोगों हमने अपने इल्म और अपने रिसोर्सेज के तहत जो चीज़ें पेश कर दी, कल आने वाले वक्तों में अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिल गई कि जो हमारे किसी फतवे से टकराए और सही हदीस उसके मुकाबले में आ जाए, तो हमारी बात को छोड़कर हदीस को ले लेना। ये है असल बात। उनका तो अपना अकीदा और उनका मसला क्या था कि कौल के मुकाबले में हदीस। आज आप देखिए आप कहते नहीं हो नहीं सकता। मैं एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ मोहब्बत के साथ, मुझे भी उनसे बड़ी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला, आज इंडो पाक कल्चर में बहुत सारे लोग उनसे नस्बत जोड़कर खुद को हनफी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी शख्सियत है। आप कहते हैं हमने इमाम अबू हनीफा की मुस्तकिल इताअत करनी है। मतलब क्या है इसका? यानी सिर्फ वो दीन लेना है जो इमाम अबू हनीफा का था। आज भी खोल कर देखिए, वो तो किताबें भी नहीं लोगों ने देखी, वो कुदूरी क्या है, वो हिदाया क्या है जो आज फिकह हनफी में पढ़ाई जाती है, चैप्टर्स के चैप्टर्स शरीयत कैसे हैं जिस पे इमाम अबू हनीफा ने या उनके इन शागिर्दों ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैं अपने ऊपर लेकर बताऊँ, मुझे पिछले अल्लाह की रहमत से तौफीक से जितने भी साल हो गए, मैंने हज़ारों दर्स दिए होंगे, मैं बड़ी बात नहीं करती, जो अल्लाह ने मुझसे लिया मैंने उसे कम ही दिया, कर इससे ज़्यादा सकती थी, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैंने हर मौजू पे दर्स दे दिया? नहीं, कुरान पढ़ाते हुए एक एक आयत पढ़ाती हूँ, दर्स में हर मौजू पे नहीं देती। क्यों? कि वो दर्स देने का कोई एक मिजाज और एक माहौल होता है। तो कोई कहे कि हम तो सिर्फ बस इनके दर्सों को सुनकर इस्लाम मानेंगे और जिस मौजू पे इन्होंने कोई बात ही नहीं कभी की उसको निकाल दें, ये है असल मसला। और मशरूत है, और शर्त एक है जो आप सूरत पढ़ चुके हैं निसा में बड़े डिटेल से, कि अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। बस सीधी सी बात है, ये लोग उलिल अम्र हैं, ये बहुत बड़े मोहसिन आइमा कराम मुहद्दिसीन कराम जो भी उलमाए दीन है, ये सर आंखों पे हैं, लेकिन ये इंसान है। तो क्या मेयार है मेरे आपके लिए फिर? कुरान और सुन्नत और शरीयत के तकाजे। अल्लाह करे के बात समझ आ जाए मुझे भी और सुनने वालों को भी। तो बात ये है कि हम देखेंगे इस बारे में कि अल्लाह और उसके रसूल की बात के अलावा किसी दूसरे की बात को सुनते वक्त हम उसकी शख्सियत उसकी ज़ात में ना खोएं, बल्कि हम दलील की बात करें। आयात बहुत सारी हैं इस बारे में, मैं साथ साथ नंबर नोट करा दूंगी जहां भी आएगा, लेकिन इस वक्त जो आपके लिए पारे की थीम आयत है वो है आयत नंबर 17। वल्लज़ी नजतनबु तागूत याबुदू हवनाबु इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबशिर बी इबाद। बखिलाफ इसके कि जिन लोगों ने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया और अल्लाह ताला की तरफ रजू कर लिया, इनके लिए खुशखबरी है। बस ए नबी बशारत दे दें मेरे इन बंदों को, यानी वो लोग जो तागूत की बंदगी। तो तागूत क्या है, आपने पीछे भी ये बात सुन ली थी कि हर वो ताकत जो अल्लाह के हुक्म से किसी दूसरी तरफ आपको मुझे ले जाए उसको तागूत कहते हैं। इस चीज़ को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला हमने अपने हर मामले को देखना है और इसी से अल्लाह ने हमारे लिए दिल खोलने हैं। जहाँ आयत आएगी तो आप इसको मज़ीद देखेंगे। दुआ कर लेते हैं, मौजू बहुत तल्ख है। इल्म वाले तो एक सेकंड में समझ गए, वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, हम तो ऐसी किसी जकड़बंदी में है ही नहीं, हम तो आपकी भी सिर्फ वही बात लेते हैं जो कुरान सुन्नत से मुतल्लिक होगी, और हर वो बात जो हमें अल्लाह के करीब कर दे वही मेयार है हमारे लिए आपको भी परखने का। लेकिन वो लोग जिन तक इल्म नहीं पहुंचा या सुथरा इल्म नहीं पहुंचा, उनके लिए ये मौजू बहुत मुश्किल है सुनना। दो में से एक चीज़ तो होगी, अगर सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह हक खुलेगा और गलत चीज़ें निकल जाएंगी, थोड़ी सी होती हैं ज़्यादा नहीं होती। और दूसरी सूरत यह है कि सुनना छोड़ देंगे, यानी या तो बंदा बुराई छोड़ता है या फिर नेकी की बात करने वाले की बात सुनना छोड़ देता है। तो हम सारों में से एक दुआ कर लेंगे अपने लिए कि रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तूने हमसे दरगुजर न फरमाया और हम पर रहम न किया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह आराफ़ की आयत 23 है। पहली दुआ जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने मांगी वो यही दुआ थी। आज के मौजू से मुतल्लिक हदीस सही मुस्लिम की रिवायत 1188 है, जुंदुब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात से 5 रोज़ पहले मैंने आपसे ये सुना, तुम खबरदार रहो, तुमसे पहले लोग अपने पैगम्बरों और नेक लोगों की कब्रों को मस्जिद बना लेते थे, कहीं तुम कब्रों को मस्जिद ना बनाना, मैं तुमको इस बात से मना करता हूँ। इसी तरह सही मुस्लिम अबू हुरैरा से भी इसी तरह की रिवायत है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर करे यहूद और नसारा को कि उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। तो याद रखिए, शख्सियत परस्ती का एक तोहफा कब्र परस्ती मज़ार परस्ती है। इस्लाम में अकेली कब्र का तस्वुर भी नहीं है, क्योंकि एक कब्र अकेली जब बनती है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर फिर कुब्बे और मनारे भी लगने लगते हैं। इस बारे को पढ़ते वक्त हमने क्या देखना है? पहली बात है कि आखिरी अंजाम के बारे में खबरदार करना है लोगों को और ख़ुद को। अल्लाह ताला से डर कर रहना है, अल्लाह ताला की इबादत करना है, किताबुल्लाह से लोगों को खबरदार करना है, अल्लाह ताला की सिफात पे गौर व फिक्र करना है, अल्लाह ताला का खालिस बंदा बनना है और अल्लाह ताला की खातिर कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहना है। पहले लोगों के हालात से नसीहत करना सीखना और ख़ुद भी लेनी है, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी नहीं करनी, अल्लाह ताला की तरफ रजू करना है, अल्लाह ताला के लिए खालिस होना है। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को हक के साथ पैदा किया इस बात को नहीं भूलना, और वही रात को दिन पर लपेटता और वही दिन को रात पर लपेटता, इसलिए उससे हमेशा पुरुमीत रहना है कि हमारी ज़िंदगी के दुख भी खुशियों में बदल जाएंगे जो ही अल्लाह ताला कुन फरमा देगा, और फिर दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके इबादत करना है। सूरह ज़ुमर में आप देखेंगे ये मज़मून कितनी खूबसूरती से पेश होगा। तो सूरह यासीन शुरू होती है आयत नंबर 22 से इस बारे में। पीछे भी बात हुई, सूरह यासीन लोग मुर्तों पे पढ़ते हैं, अगर ज़िंदगी में ही ये खुल जाए तो बहुत सारे लोग एक तो शिर्क और तौहीद का फ़र्क समझ जाएं, दूसरा ज़िंदगी और मौत का फ़र्क मिल जाए। बड़ी उदास करने वाली सूरत है, मैंने जब भी पढ़ी और पढ़ाई मेरा दिल एक लम्हे के लिए उदास हुआ। इसमें आप देखेंगे इतनी निशानी है कायनात की, कहाँ कहाँ अल्लाह ताला में सोचने की दावत देते हैं। और आज शुरू होती है वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैही तुरजऊन से लेके अगले चंद जुमले जो एक शख्सियत के थे, जो आज हम इस बारे में भी अपने लिए आइडियलाइज़ करेंगे। तो लिखिएगा कि सूरत यासीन के तनाजुर में हमारी आइडियल शख्सियत हबीब नाम का एक शख्स है। हदीस में उसका नाम है इसलिए मैंने बोल दिया, कुरान में तो उसका नाम नहीं आता। मर्द मोमिन था, खैर ख्वाह था और जुरतमंद था, रब की निशानियों पे गौर व फिक्र करने वाला था, शऊर से ज़िंदगी बसर करने वाला था, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करने वाला था, और वो लोग जिनको सलाम उन कौलम में रब रहीम की कैटेगरी में शामिल किया जाता है उन्हीं में से था। आइए उसके इस तौहीद में डूबे हुए जुमलों से बात को शुरू करते हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सके। ये जुमला नोट कर लीजिए, ये है शख्सियत परस्ती का तोड़ कि सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पे नज़रें लगाई जाएं, कि बड़े से बड़ा कोई मर्ज आ जाए, कोरोना आ जाए, कोई और मामला आ जाए, अल्लाह के माँ सिवा कोई उसको हटा नहीं सकता। अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा न पहुंचा सके। अगर वाकई ये हो सकता तो आज दुनिया सारी इस वबा से पाक हो चुकी होती। इतने तो चाहने वाले हैं इनके कि जिनके ऊपर नज़रें लगाकर लोग कहते हैं कि ये मुश्किलों को टालने वाले हैं, और कहा ना ये मुझे बचा सकें, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। तो याद रखिएगा, लोगों ने मुख्तलिफ लोगों को अपने आइडियल बनाया, मजहबी रहनुमाओं को आइडियल बनाया, आइमे कराम के साथ अपनी नस्बतें जोड़ी, बास ने शेख और पीर और फकीर के लकब चूज़ किए अपने बड़ों के लिए। इसी तरह बास लोग अंधाधुंध अपने दुनियावी रहनुमाओं और सियासतदानों पर नज़रें लगाते हैं। वो कहते हैं ये सारा मुल्क भी लूट के ले जाएंगे, वोट हमने इनको ही देना है क्योंकि हमारे अब्बा के अब्बा भी इन्हीं को देते थे और इन्होंने हमें ये कुछ दिया हुआ है। इसी तरह बास उमरा और सरदारान, जिसको इन लीड्स कहते हैं, लीडर टाइप लोग होते हैं, ये माशरे के वो करता धरता लोग हैं जिनको आप इंटेलेक्चुअल्स कहिए, एंकर्स कहिए, जिनके साथ लोगों की ऐसी मोहब्बतें होती हैं कि वो उनकी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटीज़ में डूबे होते हैं। बास लोग उनको अपने आइडियल बना लेते हैं। इसी तरह बास डिज़ाइनर्स कपड़ों के और जूतों के और स्टाइल्स को प्रमोट करने वाले लोग सोचते भी नहीं, वो एक बाजू उतार देंगे, आप भी अपनी कमीज़ का एक बाजू उतार देंगे, वो कहेंगे आप अप कर लेंगे पैंट्स को, वो कहेंगे डाउन, आप डाउन करेंगे, वो कहेंगे कमीज़ लंबी, आप लंबी कर लेंगे, छोटी करें कर दें, वो शोल्डर्स को नंगा कर दें, कट्स लगवा दें, आपने लगाने ही लगाने हैं, वो चौक लंबे कर दें, आपने करने, यानी ये है असल में वो आइडियलाइजेशन जो शख्सियत परस्ती पे जाती है। मैं तो फलां डिज़ाइनर के अलावा किसी का पहनती नहीं, मुझे फलां ब्रांड के बगैर कोई जूता नहीं अच्छा लगता। फिर इसी तरह देखिए कुछ लोग खिलाड़ियों को, क्रिकेटर्स को और इसी तरह दूसरे गेम्स करने वालों को आइडियलाइज करते हैं, और इस तरह करते हैं कि उधर नमाजें हो रही हैं ये कहते नहीं क्योंकि इनका मैच चल रहा है। फिर इसी तरह जिनका मिलान ड्रामों, फिल्मों और लाहौल हदीस की तरफ ज़्यादा होता है, फिर वो हीरोज़ को, हीरोइंस को, उनको आइडियलाइज कर लेते हैं, और फिर उनकी तस्वीरें और उनके पोस्टर्स बड़ी बड़ी जगहों पर लगाए देखे जाते हैं। और सबसे छोटे हमारे जो आइडियल है ना, हमारे दोस्त अहबाब हैं, जिसके आगे जाके हम अगले ही पारों में एक दिन बड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो क्या समझ आया कि सूरत यासीन की ये आयतें आपको मुझे एक दावत देती हैं, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, इनमें से कौन मेरे काम आएगा अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका हूँ। इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना हम इस तरह उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझा गए। तो ये था वो मर्द मोमिन, क्या खूबियां इसकी दिख रही इन आयात को पढ़ते हुए। पहली बात देखिए, मुनकरीन हक की कसरत थी लेकिन इसने हक का साथ दिया, ये बहुत बड़ी खूबी होती है। अगर आप और मैं अल्लाह की नज़रों में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं ना, तो एक जुमला आज लिख लीजिए, सारी दुनिया भी हक की दुश्मन हो जाए ना, एक भी ना सुनने आए, आपको पता है ना कि इस जुबान से हक आता है, तो आप आ जाइए, ये है हक का ऐलान। हम बहुत सारे लोगों में और बहुत सारों के क्लिक्स में खो जाते हैं और हक पीछे लगा जाता है। आप कभी यूट्यूब पर लगाकर तो देखिए कि लाइव चैनल किसके आ रहे हैं, मिलियंस लोग सुन रहे होते हैं लाइव, लेकिन क्या हो रहा है, कहीं कॉन्सर्ट्स हैं, कहीं सियासी जलसे हैं, कहीं कुछ हैं। कभी आप शैतानिक चीज़ें तो खोलकर देखिए उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। याद रखिए आज के दौर का एक ये भी बहुत बड़ा तागूत बन गया कि मेरे लाइक्स कितने हैं। देखिए हक को दबा दीजिए, पत्थर के नीचे दबा दीजिए, वल्लाह ही अल्लाह उसको खोल देगा। ख्वाहिश होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह मेरे नफ़े को आम कर दे, اے اللہ میری اس بات کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور میرا ہدایت پہ قائم رہنے کا ذریعہ بن دے، یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صرف لائکس کو دیکھ کر لوگوں کے پیچھے چل پڑنا، اور کسی کے لائکس نہیں تو اچھے نہیں ہوں گے، قیامت کے دن دیکھیے گا وہ چہرے سامنے آئیں گے جس کو انگلیوں پہ چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ میں خود پرسنلی ایسے ایسے علم والوں کو، ایسے ایسے دینداروں کو جانتی ہوں، لیکن وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے، تو ان کی بات چار دیواریوں میں رہ جاتی، وہ ریکارڈ نہیں کرتے، کوئی کیمرے کے سامنے نہیں آتا، تو کیا اجر نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا کہ حق کو لوگوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس شخص نے پورے معاشرے کا انکار کیا، گویا کہ آپ کہہ لیجئے جہاد باللسان تھا، سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ آ کر محفل میں کہہ دیں کہ دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تنقید کرتا ہے، اعتماد سے کرتا ہے، اس کو پتہ تھا کہ یہ نبیوں کا انکار کرنے والے کل تباہ ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ خود عمل کرنے والا بھی تھا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، میں کیوں نہیں عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، یہ جملہ ہے جس نے مجھے اس پارے کے تھیم کی طرف مائل کیا۔ جس دن مجھے آپ کو یہ جملہ سمجھ آ گیا، اس کے بعد میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں رہے گا۔ میں کیوں کسی اور کو پکاروں؟ دیکھیے بیوی شوہر سے کہتی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی سے کیوں مانگوں؟ وہ ایک بچہ باپ سے سائیکل مانگ رہا تھا، تو باپ کو غصہ آ گیا، چل بیٹھ جا۔ تو بچے نے جب باپ کی ڈانٹ سنی، نہیں ہے میرے پاس پیسے تیرے لیے، تو ایک جملہ بچے نے بولا، ابو پھر میں اور کس سے مانگوں؟ بس اس نے باپ کا دل پسیج دیا، اس نے کہیں سے جوڑ توڑ کر کے سائیکل دلا دی۔ تو میں اور آپ، اللہ کو کہا تو کرے، اللہ میں اور کسے مانگوں؟ اللہ تیرے بہت ہے، میرا کون ہے؟ تجھے ماننے والے بہت ہیں، میری پاس کچھ نہیں ہے۔ وما لی اللہ عبد اللہ، صرف اس ایک جملے پہ 3 گھنٹے بات کر سکتی ہوں، اللہ کی رحمت سے پوری توحید کا خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ چونکہ آج بتانے والوں کا یہ عمل کچا ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کا ادھر ادھر کے سب کو لاحقوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ فطرت کی پکار تھی کہ اس کو پکارو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس سے مانگو، اس کے آگے جھکو، رکوع قیام سجدے ان کے آگے کرو۔ میں سوچتی ہوں وہ شخص دیندار ہو کیسے سکتا ہے جو اپنے سامنے لوگوں کو سجدے کروائے اور پچکارے اور دھول مچے۔ یعنی ایک ایسا کلپ میں نے دیکھا کہ اسٹیج پہ بیٹھا کوئی شخص کچھ نہ کچھ بات کرے، اور اس کی بات میں جو لاہ کے اور ساب کے اور جو میلوڈیس سٹائل تھا، ہال میں سے ایک لڑکا اٹھتا ہے، دیوانوں کی طرح، مجنوؤں کی طرح ناچتا کودتا اسٹیج پہ آ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا رہنے دو، یہ وجد میں آ گئے۔ کبھی اللہ کے نبی کو وجد آیا تھا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ آج کسی کو قرآن سن کر وجد آتا ہے نا، تو اس کو لے جاؤ کسی چھت کے اوپر اور وہاں جا کر اس کو قرآن سناؤ، پھر دیکھو وجد میں آ کے چھت سے چھلانگ لگاتا ہے کہ نہیں۔ ٹھکوسلے ہیں، شیطانی باتیں، نقید لہو شیطان اگلے پارے میں آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، میں تو یہ کڑوی باتیں کہوں گی کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ میں سے ایک بھی میری بات نہ سنے، میں پھر بھی سرخرو ہوں، اس لیے کہ جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے توحید پہ، آپ دوسروں کو کیسے بلائیں گے؟ پھر آپ دیکھیں، نڈر ہے، جرت مند تھا، برملا اظہار کے ایمان کا۔ ہم کہتے ہیں، نانا اس موضوع پہ بات نہ کرو، لوگ چلے جائیں گے، تو چلے جائیں۔ اللہ کے نبیوں کو بھی یہ آفرز ہوتی تھی کہ ذرا سے آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیے ہم آپ کے گرویدہ ہیں۔ کتنے سال سودے بازیاں کی، سمجھوتے کرنے کی کوششیں کی، اور آخری جواب یہ تھا، لکم دینکم ولی الدین، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو خود اپنا عمل پختہ کیجئے، پھر بیٹھیے، پھر بات کیجئے، پھر دیکھیے اللہ نے حق کے لیے بہت لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ چند لوگ اگر اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پھر آپ کو پسند بھی کر لیں گے کہ یہ بات ہے جو سچ ہے۔ لیکن آپ اس ڈاکٹر کو پسند کریں گے جو ساتھ تھوڑی گلوکوز کی بوتلیں بھی دے دے کہ میٹھی ہیں تو خوش رہیں گے میرے مریض، ساتھ ان کو کوک کے ڈبے بھی دے دے کہ چلو کڑوی دوائی کے بعد ایک کوک کا کین پی لینا۔ سیدھی سی بات ہے، دنیا میں آپ ہر جگہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ پیوریٹی کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات کرنے میں حت الوسا کوشش کرنی چاہیے کہ بات اچھے طریقے سے کی جائے، کسی کی بے عزتی نہ ہو اور کسی کو برا نہ لگے، لیکن اپنا عمل نہ چھوڑیے۔ تو نڈر اور جرات مند، آج ہم حق کو حق سمجھتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صاحب تدبر تھا، دلائل سے بات کر رہے ہیں، ابھی بھی تو دیکھیے نا اس کے جو جملے کتنے پیارے ہیں، کہ چلو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ ہی برا کہ نا، میرا کیا گیا، کیونکہ اہد الحسنہ یعین تو مجھے ملی گئی، دنیا میں رہتا تو مبلغ رہتا، اللہ نے مجھے دنیا سے اوپر اٹھا کے شہید بنا کے جنت میں میری روح کو ڈال دیا۔ تو تدبر کرتا ہے، تدبر سے بات کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس کے جملوں میں حکمت ہے، درد مندی ہے، خلوص والا دل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں نہ ہو تو تبلیغ نہ کریے، اور آپ کر بھی نہیں سکیں گے معذرت کے ساتھ۔ نمبر 1، تبلیغ کریے تو حکمت سے کیجیے، درد مندی لائیے پہلے دل میں، اور خلوص سے کریں گے۔ دیکھیے جس چیز سے وہ بچا، اللہ نے اس کو کیا کیا، قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا، یہ اخلاص کی دولت ہے۔ اور لکھ لیجئے مخلص لوگوں سے، ان کی زندگی کی نسبت ان کے جانے کے بعد زیادہ فائدہ لیا جاتا ہے۔ چاروں ائمہ کرام اس کی مثال ہے۔ इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, इमाम इब्ने कय्यम इसकी मिसालें हैं। अपनी ज़िंदगी में लोगों ने जेलों में डाल दिया, एक एक बात पे कोड़े डलवाए गए। आइमा कराम की ज़िंदगी के मसाइल तो पढ़िए, आज माशाल्लाह देखिए लोग उनके साथ अपनी नस्बतें जोड़ते हैं। तो याद रखिए कि ईमान गूंगा ईमान नहीं होता, गूंगा बहरा ईमान ईमान ही नहीं, वो निफाक है। मोमिन जब किसी चीज़ को अपने लिए हक समझता है तो फिर उसके ऊपर चलता है, और फिर साहिब इस्तकामत भी था। थोड़ी दिन की बात नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, बल्कि करता ही गया ये काम। आम सा इंसान था। अम्बिया के जुटलाने वाले लोगों, बिगड़े हुए माशरे में हक का पैगाम देकर खासुल खास हो गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, खैर ख्वाह था ज़िंदगी में भी और मरने के बाद। अल्लाह के नबी का खूबसूरत जुमला इस शख्स के लिए मौजूद है कि ये हबीब तो वो था कि नसखत कौमहू, जिसने अपनी कौम की खैर ख्वाही की, हय्यम व मैया, ज़िंदगी में भी करता रहा और मरने के बाद भी। तो ऐसे बनिए कि आपकी ज़िंदगी भी इसी बात में गुजर जाए, यही ज़ुबान बोलती रहे, और अगर आपकी कब्र से कोई आवाज़ आए, अगर आपकी रूह की पुकार आए, और किसी को ख्वाब में भी आप मरने के बाद देखें, तो आप वहाँ भी यही कह रहे हो कि इनको समझाओ कि जो मैं कहता था आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो अल्लाह की राह में आप आंसू बहाकर तो देखिए, अल्लाह एक एक आंसू को संभालेगा। अल्लाह कभी अपने रस्तों में निकलने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, बड़ा कदरदान है वो। लोगों के आगे मत रोइए, लोगों के आगे सजदे रुकू क्याम और आजिया ना कीजिए। और मुबल्लिग का बेलौस किरदार पढ़कर दिल चाहता है कि अल्लाह हमें ऐसा मुबल्लिग बना दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई सब का, ना लाख का, ना हमारे नाम के साथ कोई डिग्री, ना हमारे नाम के साथ कोई टाइटल लगवा, हमें डॉक्टरेट नहीं चाहिए, हमें अपने नाम के साथ कोई शेख और शेख नहीं चाहिए। बस हमें एक ऐसा मुखलिस मुबल्लिग बनाकर इस दुनिया से ले जाओ, क्योंकि जो मुबल्लिग होता है ना, ये अल्लाह के दीन का नुमाइंदा होता है, एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम होता है, हमदर्द होता है, एक आम शख्स होता है, लेकिन अल्लाह उसको ख़ास कर देता है। और पिछली आयतों में सोची ना, मां कद्दम हुआ आसार हूँ, आय 12 में पढ़ा था, क्या खूबसूरत आसार छोड़ गया। आज तक कुरान में इसके असरात मौजूद हैं। लेकिन वही बात है कि जब लोग नहीं मानते तो फिर क्या करते हैं, वही जो इसके साथ हुआ। अब ऐसे लोगों के ऊपर हसरत है, बड़ा जिसको कहते हैं ना हुक्का उठता है, आहें भरने का अंदाज महसूस होता है। या हसरत नली बात मा याती है मेर रसूल इनिल्ला का नुबिही यस्तख्जियोन, ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। इन्हीं लोगों में से अक्सर लोग मुखलसीन की कदर नहीं करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने इस शख्स के जरिए से बहुत सारे लोगों को हिदायत दी। सवाल पैदा होता है कि शख्सियत परस्ती के असरात क्या निकलते हैं। जब लोग किसी एक ही शख्सियत के शहर में खो जाते हैं और दूसरी किसी हस्ती की तरफ कान नहीं लगा सकते, किसी के आस्ताने पे नहीं जा सकते, आपको पता है कि ये जगह भी बिकी होती हैं, जैसे वोट्स बिकते हैं ना, इस तरह शख्सियात भी आज के दौर में बिकती हैं। तो इसके असरात क्या दिखते हैं? नंबर एक, लोग रसूलों के तरीकों का मजाक उड़ाते हैं, गलत नज़रियात की तरवीज होती है, माल और वक्त का ज़ियां होता है, और लोग एक भेड़ चाल पे चल रहे होते हैं, फिर अपनी शख्सियत मस्ख हो जाती है, और दिन ब दिन ये लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं। आगे अल्लाह ताला कायनात में से कुछ निशानियां देते हैं कि ज़रा गौर तो करो। वा यतुल्लहुमुल अर्दुल मैता, और इनके लिए एक निशानी खुश ज़मीन है जिसको हमने ज़िंदा कर दिया, और इससे गल्ला निकाला जिससे वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूरों के बागात पैदा कर दिए, और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग इसके फल खाएं, और इसको इनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते? सुबहान अल्लसी, वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, हाँ वो ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, हाँ खुद इनके नफूस हों, हाँ वो चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। और इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज के लिए जो मुकर्रर करदा रहा है वो इसी पर चलता रहता है, ये है अंदाज़ा मुकर्रर करदा ग़ालिब इल्म अल्लाह का। और हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है, कल उर्जून अल कदीम, बिल्कुल आखिरी रातों का चांद या बिल्कुल शुरू के दिनों का चांद, बिल्कुल एक आर्क सी बन जाती है। ना आफ्ताब की ये मजाल है कि वो चांद को पकड़े और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। और इनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इसकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं, और अगर हम चाहते तो इन्हें डुबो देते टाइटैनिक की तरह। फिर ना तो कोई इनका फरियाद रस होता ना बचाए जा सके, लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए इन्हें फ़ायदे दे रहे हैं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई ऐसी निशानी आती भी नहीं कि जिससे ये बेरुखी ना बरतते हो, यानी हर निशानी से एराज ही करते हैं। और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह के दिए हुए में से कुछ खर्च करो तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला पिला देता, तुम तो हो ही खुली गुमराही में, रुकने को दिल ही नहीं चाह रहा बीच में, इतनी प्यारी कायनात की निशानियां। आप देखिए कि इनको कहते हैं कौनी निशानियां, क्या हम अल्लाह ताला की मार्फत कुरान की आयतों के साथ साथ कायनात की आयतों को भी देख सकते हैं? कैसे यहाँ जमीन की बात की, हमारे दिल भी जमीन की तरह, कुछ जमीन बड़ी जरखेज होती है, जरा सा बीज पानी डलता है तो पौधे उग जाते हैं। इसी तरह आपकी तरह कुछ दिल इतने रोशन है माशाल्लाह कि कुरान का पानी आता है और साथ ईमान का बीज जो कि डोरमेंट था, छुपा हुआ था, उससे अब अमल के पौधे नजर आने लग जाते। फिर इन आयतों में हमने देखा कि कायनात की हर चीज़ जोड़ा है। आयत 36 में देखा अल अजवाज अकुल्लहा, तो हर चीज़ का जोड़ा है तो दुनिया का जोड़ा भी तो होना ही चाहिए ना। ये दुनिया अपने जोड़े यानी आखरत के साथ पूरी होती है। जैसे आप देखिए शौहर बीवी एक दूसरे का जोड़ा है ना, इंसानियत की बका की तकमील के लिए शौहर बीवी का साथ होना ज़रूरी है। फिर नए बच्चे आएंगे, फिर नस्ल आएगी, तो कायनात की हर चीज़ जोड़े में है, सिर्फ अल्लाह का कोई जोड़ नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप देखिए एक छोटी सी चीज़ सेल होती है, आपने साइंस में देखा होगा, अंदर न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन है। अल्लाह की ज़ात एक न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं तवाफ़ की सूरत में भी, खाना काबा में जाकर, और इसी तरह उसी की तरफ कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। फिर इन आयतों में गौर की एक चीज़ क्या है कि सूरज मुसलसल गर्दिश में हर चीज़ घूम रही है, लश्शम्ज़ु यंबगी लहा तुद्रिकल कमर, क्या सेट सिस्टम है। सूरज मुसलसल गर्दिश में है, हम स्टेबल क्यों हैं? वो क्यों कहा शायर ने कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या था एक सितारों का एक क्लस्टर जिसका एक टूटा हुआ सितारा तू है, तू साबित वो सही आ रहा, यानी तुम्हें अपने असलाफ से निस्बत कैसे हो कि वो तो हर वक्त अल्लाह के रस्तों में भागने वाले थे, फफेरो इल्लाह पे अमल करते थे, जो साए खून और साए हाथ थे, तुम क्यों बैठ गए हो? आज हम सच्ची बातें बैठे हुए हैं, ये घरों का लॉकडाउन तो एक वक्ती सा मसला है, वैसे भी हम बैठे हुए हैं, हम बाहर निकलते भी हैं तो किस काम के लिए निकलते हैं, कभी आपने मैंने सोचा? फिर आप देखिए वशम्स तजरीली मुस्तकर्रिल्लाह, देखा हमने ज़ालिक तकदीर अज़ीज़ अलीम, जब सूरज अपने मुस्तकर के गिर्द घूमता है तो तुम भी तो अपने रब के गिर्द घूम कर तो देखो, उसके हुक्मों को मान कर तो देखो। आप देखिए कि सूरज 20 किलोमीटर पर सेकंड के साथ घूम रहा है, और कहते हैं कि वेगा स्टार की तरफ बढ़ रहा है जो एक ब्लैक होल की तरफ ले जाएगा और बिलाखिर सूरज उसमें गिर कर ख़त्म हो जाएगा, यही क़यामत होगी। 365 डेज में हर दिन सूरज एक मुख्तलिफ डिग्री पे होता है, इसीलिए आपके मेरे पास फजर और मगरिब का वक्त एवरी डे मुख्तलिफ होता है। नॉर्वे में तो हर दिन 5-6 मिनट का फर्क पड़ता है क्योंकि वो पोल्स पे है। हमारे मुल्कों में भी थोड़ा थोड़ा सेकंड्स का फर्क होते हुए एक हफ्ते में 1-2 मिनट आगे पीछे होते हैं, ये कौन कर रहा है? कुल्लुन फी फलकी यस बहून, उस एक को तुम भी पुकारो, तुम क्यों एक जगह नहीं रह सकते इकट्ठे? सूरज चांद गर्मी सर्दी के मिजाज के फर्क के साथ रात दिन बिल्कुल मुख्तलिफ। आप कहते हैं हम इकट्ठे काम नहीं कर सकते, मैं किसी के साथ काम नहीं कर सकती, मुझे अकेले में दीजिए, गलत करते हैं आप, नहीं कर सकेंगे टीम वर्क। आप देखिए कुल्लुन फी फलकी यसबहून पे एक बड़ा खूबसूरत कुरान का मोज़ है, कभी करना चाहें तो एक्टिविटी करिएगा, लिखिए कुल फी फलक, आप इनके काफ को काफ से और दूसरे को दूसरे से मिलाएं, ये एक ऑर्बिट बनता है। आज अल्लाह ताला हमें एक दावत देते हैं कि आज इस्लाम को ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो साइंस भी पढ़ें और कायनात के ये राज खोलें। लोग कहते हैं कुरान पढ़ने वाले बैकवर्ड होते हैं, कुरान पढ़ने वाले तो मॉडर्न लोग होते हैं, अल्लाह ने 1400 साल पहले वो बातें बता दी जो कि आज तक आप देखिए कि लोग पूरी तरह डिस्कवर ना कर सके। तो क्या सीखा हमने इन सारी आयतों को पढ़ने के बाद कि मोमिन सिराते मुस्तकीम पे रहता है। कायनात से सबक लेता है कि जब सारी कायनात एक अल्लाह के हुक्म पे और उसके बताए हुए तरीक़ों पे है, तो मैंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा करनी है, शरीयत के अहकामात की पैरवी करनी है, सहाबे कराम को रोल मॉडल बनाना है, और ख़वातीन होने के नाते हमने उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात की पैरवी करनी है। इसके बरक्स अगर आप देखें आयत 46 में मुंह फेरने वाले की जो बात हुई, तो दुनियादार जो मोरिस होता है वो क्या करता है, सुन्नत से मुंह फेरता है तो बिदत की पैरवी शुरू हो जाती है, अल्लाह को छोड़ता है तो ताखुत के पीछे चल पड़ता है, शरीयत की जगह उसकी ज़िंदगी में खुद साख्ता शरीयत होती है। सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन की बजाय दीनी रहनुमाओं और दुनियावी लोगों और वो जो फेमस हैं उनके अंधी तकलीद शुरू कर देता है। तिर्मिज़ी की रिवायत है 2674, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया तो जो लोग इसकी पैरवी करेंगे इनके अजर के बराबर हिदायत की तरफ बुलाने वाले को भी सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि इसकी इत्तबा करने वालों के अजर व सवाब में कुछ भी कमी हो, और जिसने जलालत व गुमराही की तरफ बुलाया तो जो लोग इसकी पैरवी करेंगे इनके गुनाहों के बराबर गुमराही की तरफ बुलाने वाले को भी गुनाह मिलेगा, बगैर इसके कि इसकी वजह से इनके गुनाहों में कुछ भी कमी हो। तो आयत 46 पढ़ते हुए इस हदीस को याद रखिएगा, हमेशा हक के दाई बनिए, शर बातिल फैलाने से आपको क्या मिलेगा। बस जब क्या होता है, ज़रा सी ऐसी बातें कर दो लोग खुश हो जाएंगे, फिर बहुत लोग आएंगे, फिर झूमेंगे, फिर लोग कहेंगे वाह वाह माशाल्लाह, आप जैसी दुआ कोई नहीं कराता, आप जैसा आवाज़ कोई नहीं फरमाता, क्या लय होती, मत कीजिए ये सब, खुदा के लिए सीधी सीधी बातें कीजिए तबलीग के नाम पे। अपनी जात को मनवाने वाले ऐसे ढकोसले करते हैं और लोग फिर अल्लाह से जुड़े ना जुड़े उनके गुन गाते हैं, सीधी बात कीजिए, कौलन सदीद पिछले ही बारे में पढ़कर आए हैं, हक होगा तो अल्लाह ताला आपकी बात में तासीर ज़रूर डालेंगे। देखिए ना, डॉक्टर ने दवा खिलानी होती है जो असर करे, वो ये तो नहीं कहता कि मरीज़ खुश हो जाए, एक सुरख गोली दी, एक पीली दी, एक नीली दी, और देखिए इन्होंने तो गोली कोई नहीं दी, इन्होंने तो कहा बल्कि दो चार चॉकलेट खा लो। तो हक हक है, ये कोई कैंडी स्टोर नहीं है, सच बोलिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हक बोलो चाहे कड़वा, और अल हक को मुर्रा, हक तो कड़वा होता ही है, और स्पेशली उनको तो ज़्यादा ही लगता है जिनका टेस्ट बदल चुका हो। फिर आगे क़यामत की तरफ इशारे किए जा रहे हैं, व यकूलू नमता हाजल वादु इन कुंतुम सादिकीन, वो कहते हैं ये वादा कब होगा, सच्चे हो तो बतलाओ, इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतज़ार है जो इन्हें आ पकड़ेगी, सूर की तरफ इशारा है, और ये बाहम लड़ाई झगड़े में ही होंगे, इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने अहल की तरफ लौट सकेंगे। इतनी अचानक आएगी क़यामत, तो जो वसीयतें करनी आज कर दीजिए, कल वक्त नहीं होगा। तो सूर के फूके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अब कोई उजर नहीं रहा, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। देखिए आज मस्जिदों में जाना मुश्किल, मदरसों में जाना मुश्किल, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल, सूर के फूकते ही सारी मुश्किलात खत्म और तेज तेज चलेंगे, कहेंगे हाय हाय हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठाया, मम बसना मिम मरकदीना। जवाब मिलेगा हाजमा वादर रहमान व सदकल मुरसलून, यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था, ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे जमा होकर हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। और अब रिजल्ट सुनिए, फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैया, पस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ इन्हीं कामों का जो तुम किया करते थे। जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं, स्माइली, फ्रेश, रिलैक्स्ड, वो और इनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, हुम वाज़वाज हुम फी ज़िलालिन अलअरायकि मुत्तकीउन, इनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और भी जो कुछ वो तलब करेंगे, मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहा जाएगा। महसूस करिए इसको, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इससे भी कोई खूबसूरत प्रोटोकॉल होगा एक बंदे के लिए जो वहाँ हो। इसके बरक्स एक और किरदार, इंसानों में खोने वाला, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए गुनाहगारो आज तुम अलग हो जाओ, ए औलाद आदम क्या मैंने तुमसे कौलो इकरार न लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करना, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये शैतान की इबादत कौन करता है, गिनती के चंद लोग आज के दौर में करते होंगे, किसी बड़ी सुपर पावर के अंडर रहते हुए किसी कोने खुदरे में आम लोग तो नहीं करते। तो लिखिए, इंसानों की पूजा करना, शख्सियात को पूजना असल में शैतान की पूजा है। हर बुत के पीछे शैतान होता है जो इनडायरेक्टली खुद को सजदा करवाता है। तो दो तरह के अंजाम देखे हमने इन आयात में, एक वो जो अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों पर चलते थे, जन्नती होंगे, बागों और सायों में होंगे, रब की तरफ से इनको सलाम किए जाएंगे। शौहर बीवियों के साथ की बातें, क्योंकि अच्छी जगह पे भी इंसान अकेला हो तो मज़ा नहीं आता, बल्कि वो खुशी गम बन जाती है जो अकेले मनाना पड़े। खुशियाँ तो अपनों के साथ ही अच्छी लगती हैं। यहाँ से आप शौहर बीवी के ताल्लुक़ की खूबसूरतियाँ भी नोट कीजिए कि कैसे अल्लाह ताला ने इन सारों को एक दूसरे के सामने पेश कर दिया, और फिर जब अल्लाह का सलाम आए तो क्या वो खूबसूरती होगी। इसके बरक्स शख्सियात में खोने वाले, तौहीद को छोड़कर तागूत की तरफ जाने वाले और सुन्नत को छोड़कर बिदात की तरफ ले जाने वाले लोग, उनका मिजाज क्या है? जहन्नम। हाथों, पाँव और मुंहों पे मोहरें, नहीं बोल सकते, और अपने अमाल की वजह से अफसोस में मुबतला। इसीलिए अल्लाह ताला फिर एक सीधी सी दावत देते हैं, क्या करो? वाने बदू निहाजा सिरा तुम मुस्तकीम, और मेरी ही इबादत करना सीधी राह यही है। क्योंकि हम इंसानों की जब इबादत करने लग जाते हैं तो हम सीधे रास्ते से उतर जाते हैं। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? आज भी उन लोगों के लिए दुआ कीजिए, दर्द महसूस कीजिए जो दीन के नाम पे किसी आस्ताने पे बैठे सर धुन रहे हैं और इसी तरह इंसानों में खो गए। यही वो दोजख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था अपने कुफर का बदला पाने के लिए। आज इसमें दाखिल हो जाओ। इतना क्यों है कुरान में तذکرہ के शख्सियात में मत खो? लेकिन अल्लाह के माँ सिवा हर चीज़ शख्सियत ही तो है, चाहे आप उसको तागूत कहें या कुछ और कहें। तो वजूहात नोट कीजिएगा, 60 से 63 आयात की रोशनी में सूरह यासीन। पहली बात है कि इसकी बड़ी वजह अंधी तकलीद होती है। लोग बगैर सोचे समझे बस किसी एक के पीछे लग गए, फॉलोअर बन गए उनके। दूसरी वजह आबा परस्ती, क्योंकि बाप दादा यही करते थे। अब एक छोटा बच्चा बाप के साथ कहीं ऐसी जगह पे गया जहाँ ऐसी नाज़ेबा हरकतें हों तो बड़ा होकर वो भी अपने बच्चे को उधर ही लेकर जाएगा। तीसरी चीज़ है ख्वाहिश परस्ती। लिखिए, बहुत अहम बात कहने लगी हूँ। ये चंद काम कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो। ख्वाहिशें अपनी जगह, किसी एक मौके पे, किसी उर्स पे, किसी त्यौहार पे, किसी खास दिन पे जाओ, चढ़ावा चढ़ा दो। आज भी तो है, मदर डे मना लो, फिर सारा साल माँ को पूछो भी नहीं। और वैलेंटाइन पे जाके शौहर बीवी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें, उसके अलावा जहाँ जो मर्जी करें। तो ख्वाहिशात पूरी होती हैं ऐसी जगहों पर। ये जो कुरान हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद ख्वाहिशें नहीं पूरी होती। इसलिए देखिए, पढ़ने वाले सुनने वाले कितने भी क्यों ना हो, 100 हज़ारों में, हज़ारों लाखों में क्यों ना बदल जाए, लेकिन दुनिया की आबादी बिलियंस में है। आज भी बिलियंस के मुकाबले में इस कुरान को सुनने वाले तो चंद गिनती के लोग हैं। आटे में नमक है ये। वजह क्या है कि इस तरह सुनने के बाद फिर ख्वाहिशें नहीं पूरी होती, क्योंकि अभी शादी भी तो है ना रमज़ान के बाद। अब दौरे कुरान में इतनी बातें सुन ली और फिर शादी वाले दिन और फिर उस तैयारियों में जाकर वो कुछ किया, फिर लोग नहीं नहीं हमने इस साल नहीं सुनना क्योंकि इसके फौरन बाद शादियों का सीज़न है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। फिर इस तरफ देखिए, दुनिया की शोहरत चाहना, ये बहुत बड़ी वजह। मशहूर होने लगते हैं ऐसे लोग, हालांकि हक को शोहरत की कोई परवाह नहीं होती। फिर इसी तरह अपनी शख्सियत की कमज़ोरी होती है। इंसान फ़ौरन इम्प्रेस हो गया दूसरे से, सोचा समझा नहीं, तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को क़यामत के दिन जिस पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा ना, वो उनके अपने हाथों और अपने पाँवों पे आ रहा होगा। कैसे? नख्तिमु अला अफवाहिहिम, मुँह तो बंद हैं लेकिन उनकी मोहरें लगा दी गई। देखिए आयत 65 को, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पांव गवाहियां देंगे इन कामों की जो वो करते थे। यानी जिन कदमों पे जाकर ऐसी जगहों में गुनाह के काम किए, वो हाथ जो चूमे गए, जिससे चिटचैट की गई, जिससे गलत काम किए गए, और अगर हम चाहते तो इनकी आंखें बेनूर कर देते। यानी जिन आंखों से इन्होंने बातिल रास्ते देखे, तागूत को देखा सुना, हम उन आंखों को बेनूर कर दें, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन इन्हें कैसे दिखाई देता? और अगर हम चाहते तो इनकी जगह पर ही इनकी सूरतें मसख कर देते, फिर ना तो वो चल फिर सकते और ना लौट सकते थे। क्या बुरा अंजाम होगा। अब देखिए, आपका अपना बच्चा मेहमान के सामने कोई ऐसी बात कह दे जो आपने नहीं कहनी थी, शौहर बीवी की कोई बात मेहमानों के सामने आ गई आपके बच्चे की जुबान से, जरा देखिए मेहमानों के जाने के बाद उस बच्चे का क्या हाल होगा। तो आज सोचिए उस दिन अपने हाथ पांव कितने बुरे लगेंगे। स्पाइज हैं ये, जासूस हैं हमारे, हम इनको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, लेकिन ये कराए के हैं, ये हैं किसी और के। कल क़यामत के दिन उसका साथ देंगे। हदीस बहुत खूबसूरत है, लेकिन फ़ायदे की खातिर शेयर करती हूँ आपसे। सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे तो आप एकदम हंस दिए। फिर आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैं किस वजह से हंस रहा हूँ? सहाबी कहते हैं, हमने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। फरमाया, बंदे के अपने रब से मुखातिब होने से। वो अर्ज़ करेगा, रब जी क्या आप मुझे जुल्म से नहीं बचाएंगे? फरमाया, क्यों नहीं, ज़रूर। वो अर्ज़ करेगा, मैं अपने खिलाफ सिर्फ अपने नफ्स की गवाही कबूल करूँगा। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, आज तेरा नफ्स ही तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए काफ़ी है, और लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते भी गवाही के लिए काफ़ी हैं। फरमाया, इसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और इसके अज़ा से कहा जाएगा कलाम करो। फिर फरमाया, वो इसके अमाल के मुतल्लिक बोलेंगे, फिर इस बंदे के और इसकी ज़ुबान के दरमियान से पाबंदी उठा ली जाएगी। वो अपनी ज़ुबान से बोल कर कहेगा, तुम्हारे लिए दूरी हो और हलाकत हो, मैं तो तुम्हारी ही तरफ से झगड़ा कर रहा था। यानी आज तुझे जहन्नुम से बचाने के लिए तो मैं झगड़ा था और तुम मेरे ही खिलाफ़ बोली। तो अपने इन हाथों पाँव को सोच के पालिए, कल कहीं ये हमारे खिलाफ़ ना बोलने लगे। और इसके बाद फिर बुढ़ापे की बातें। बुढ़ापा क्या है? दुनिया की बरज़ख़ है। डेथ ट्रेन के इंतज़ार में बैठा हुआ इंसान, सारी ज़िंदगी बहुत दौड़ें भी लगा ली, लेकिन आखिरी अंजाम क्या है? वमन नुअम्मिरहु नुनक्किस फिल खल्क अफला याकिलून। और जिसे हम बूढ़ा करते हैं, इसे पैदाइशी हालत की तरफ फिर उलट देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते? ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए हैं, ना ये इसके लायक है, यानी अशार नबी के लायक नहीं। वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़ेह कुरान है, ताकि वो हर उस शख्स को आगाह करे जो जिंदा है, और काफिरों पर हुज्जत तमाम हो जाए। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए चौपाए भी पैदा कर दिए, जिनके ये मालिक हो गए हैं, और इन मवेशियों को हमने इनके ताबे फरमान कर दिया, जिनमें से बास तो इनकी सवारियां हैं और बास का गोश्त ये खाते हैं। इन्हें इनमें से और भी बहुत से फ़ायदे हैं और पीने की चीज़ें, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करते? और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं, हालांकि इनमें इनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी हैं। ये जानवरों के साथ क्या शिर्क होता था? किसी ख़ास तारीख में दूध को पकाकर उसकी कोई चीज़ बनाकर बांटना, और ये कहना कि अगर इस दिन ना बांटा तो फिर भैंसें मरने लगेंगी। अब 12 है, 10 है, 11 है, 19 है, 20 है, वो कोई भी तारीख हो, अल्लाह ताला कहते हैं इसकी दलील दो। तुम दूसरों के लिए ऐसे काम करने से पहले ये तो सोचो कि दूसरों ने इन जानवरों के दूध में हिस्सा क्या डाला है। देखिए, शिर्क ऐसे ढके छुपे तरीकों से हमारी ज़िंदगियों में आता है कि हम बाज़ दफ़ा उसको पहचान भी नहीं पाते। बस आपको इनकी बात गमनाक न करे, हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने इसे नुतफे से पैदा किया है, फिर यकायक वो सरीख झगड़ालू बन बैठा, और इसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी पैदाइश को भूल गया, कहने लगा इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप जवाब दीजिए कि इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इन्हें अव्वल मरतबा पैदा किया है, जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, और वही पैदा करने वाला दानाव बीना है। उसकी तो कुदरत इतनी है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। वो जब कभी किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसे इतना फरमा देना काफ़ी है कि तू हो जा, तो वो इसी वक्त हो जाती है। साहिबे कुन फयकून है वो। बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। तो ये थी सूरत यासीन। क्या सीखा आपने? और अगर हम सिर्फ इसको मरने वालों पे पढ़ने की बजाय और किसी मुश्किल में इसको 72 टाइम पढ़ के सहेलियों को खाने खिलाने की बजाय सिर्फ गौर कर लेना कि इसमें से सीखा क्या है, तो इंशाल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा। अभी क्या सीखा? राहे हक का शहीद बनना है। कोई कत्ल कर देगा, कर दे, हक बात करनी है, और करनी भी उस तरह से जैसे करने का तरीका सहाबा से और अल्लाह के नबी से सीखा है। फिर इसी तरह मुनकरीन का तकबर टूटता है बिलाखिर। आज़ा की गवाही हर एक अपनी तैयार रहे कि कल जब मेरे अज़ान ने गवाही देनी है तो उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। फिर इसी तरह शायरी पैगंबराना शान के मुनाफी है, तो गा गा कर बोलना ये कुछ ज़्यादा प्यारा अंदाज़ नहीं होता। मौत के बाद की ज़िंदगी अल्लाह दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है, और सबसे आखिर में पड़ा साहिबे कुन फयाकून हर चीज़ पे कादिर है। सूरत यासीन का पैगाम क्या है, क्योंकि ये सूरत बड़ी प्यारी है, तो नोट कीजिएगा। पहली बात है कि कुरान जिंदों के लिए हिदायत की किताब है। मरने का इंतज़ार मत कीजिए किसी के, ज़िंदगी में ये किताब उसके लिए हिदायत की किताब बना कर पेश कीजिए। फिर अल्लाह साहिबे कुन फयकून है, इसकी तरफ लौटने की तैयारी करें। अल्लाह ताला की निशानियों से सबक लेना सीखना है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करते हुए तकवा वाली ज़िंदगी बसर करनी है। और सबसे प्यारा पैगाम जो मुझे लगता है इस सूरत में, हरकत में बरकत है। हर दम काम करते रहिए, ना सूरज को आराम चाहिए ना चांद को चाहिए। देखिए, आपसे जाता है सूरज तो दूसरी तरफ निकल आता है। आप तो सोचते हैं ना रात को सूरज सो जाता है, नहीं सोता, ये तो अल्लाह के अर्श के पास चला जाता है। लेकिन दुनिया में आप देखिए तो इधर से उधर, उधर से इधर चलता है। आप भी सूरज बनिए, हिदायत का सूरज बनिए, चिराग बनिए। क्यों सोते हैं, कितना सो लेंगे, कितना खा लेंगे, कितना कमा लेंगे, बिल आखिर खाली हाथ जाएंगे, जेब भी नहीं होगी कफन में। तो खूबसूरत पैगाम मौत के साथ इसका ताल्लुक है, तो फिर इस ताल्लुक को महसूस कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में हिदायत के चिराग जलाएं। नीयत कीजिए कि कम अज़ कम 5 लोगों तक मैंने हिदायत का ये पैगाम पहुंचाना है, अल्लाह की तौफीक से। आगे है सूरत सौफात, 37 नंबर की सूरत है, 182 आयात हैं। सौफात लफ्ज़ को देख लीजिए, और आगे एक सूरत सफ़ भी आएगी। यहाँ से देखिए कि हमारे दीन में सफ़ बंदी की क्या अहमियत है, डिसिप्लिन की क्या अहमियत है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या अहमियत है। यानी फरिश्ते सफ़े बांधे हुए हैं तो हम डिसऑर्गेनाइज क्यों हैं, हमारे कामों में हुसन और खूबसूरती क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफाति सफ्फा, फज्जाजिराति जजरा, फत्तालियाति ज़िक्रा, इन्ना इलाहकुम लवाहिद। इस सूरत का पैगाम भी यही है जो पिछली सूरत में है, अल्लाह के एक होने को दुनिया में आम कर दो। हम इस सूरत में जिन शख्सियात से मिलेंगे वो अंबिया कराम हैं, मसलन हमारे आइडियल्स। सूरत साफात के तनाजुर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल आ रही है, जो बेहतरीन मुबल्लिग थे, बाहिम्मत नबी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी औलादों का जिक्र है, कुर्बानियाँ देने वाले, हिजरतें करने वाले। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, गंदगी और कबीरा गुनाहों के खिलाफ जिहाद करने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम वक्त के हुक्मरान के खिलाफ कलमे हक बयान करते दिखते हैं, और इलियास अलैहिस्सलाम शिर्क के खिलाफ एक दीवार बनी खड़े हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मुश्किल हालात में अल्लाह को मुश्किल कुशा कहते हुए तस्बीह और हम्द और इस्तगफार करते हैं। आप इन सारी शख्सियात को सोचिए, क्या आपको कभी किसी जगह दुनिया में किसी नबी की कोई कब्र, कोई मज़ार, कोई दरगाह, कोई अड्डा, कोई आस्ताना दिखा? इस्लाम का ये मिजाज ही नहीं है। ये जो अक्सर खबरें दी जाती हैं, ये उस नबी की कब्र, उसकी कुछ नहीं पता, और अगर है भी तो वहां जाकर कोई खड़ा नहीं हुआ दिखेगा आपको। अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक तो अपनी बीवी के हुजरे में है, मस्जिद तो पहले से थी, मस्जिद थोड़ी बनाई गई ऊपर। बाज़ लोग कहते हैं कि फिर अल्लाह के नबी की कब्र पे मस्जिद क्यों है, तो गलत फहमी दूर कीजिए। वो कब्र पहले और मस्जिद बाद में नहीं बनी। आज भी देखिए एक्सटेंशन सारी दूसरी तरफ से होती है, आप बाबे जिब्रील से आकर देखिए, बिल्कुल कब्रे मुबारक उधर ही है। वो पहले से थी, अम्बिया कराम जहाँ फौत होते हैं, अम्बिया कराम का जहाँ आखिरी वक्त आता है वो वहीं रहते हैं। तो लिहाजा अल्लाह के नबी की कब्र पे तो आज तक आपने कभी ऐसे कोई ढोल तमाशे ना देखे। अगर उर्स होता तो अल्लाह के नबी का होता, अगर बताशे बटते तो वहां बटते, सलाम रुकू सजदे किए जाते तो उधर किए जाते। वहां भी जाकर देखिए जो रियाजुल जन्ना में जाते हैं, सीधा किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। आप जरा सा लेफ्ट साइड पे हो तो फिर कब्र मुबारक है, इजाजत ही नहीं। हराम हराम की बातें आती हैं वहां। क्या हो गया जो उम्मत मुस्लिमा को, हरम से हो आए, मस्जिद नबवी में 40 नमाजें पढ़ाए, लेकिन शिर्क ना खत्म हुआ। अल्लाह के नबी से बड़े हैं ये हमारे बुजुर्ग के, जिनकी कब्रों पे जाकर आप इस तरह की बातें करें कि जो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के खिलाफ है। तो अकीदे को दुरुस्त करके इस सूरत को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफाति सफ्फा, फज्जाजिराति जजरा। कसम है सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर पूरी तरह डांटने वालों की, फिर जिक्र अल्लाह की तिलावत करने वालों की, यकीनन तुम सब का माबूद एक ही है। कहते सब यही है, लेकिन इबादत के कुछ मज़ाहिर गैरों के लिए भी करते हैं। इवन किसी बुत के सामने सजदा करने वाला शख्स भी कहता है कि मैं अल्लाह को कर रहा हूँ। ये एक शैतान ने बहुत बड़ा धोखा दिया कि हर जगह शिर्क करवा के कहता है ये है नहीं शिर्क, और जो इसको शिर्क कहेगा ना वो पता नहीं साबी होगा कि वहाबी होगा। इस तरह की बातें आम कर दी जाती हैं। कुरान पढ़ लीजिए, ना आप वहाबी हैं, ना आप साबी हैं, ना आप कुछ और हैं, आप मुसलमान हैं। आज ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो लोगों को कुरान के असल सोर्सेज तक ले जाए। तभी तो असल कुरान नहीं को पढ़ने देते लोग, कहते हैं ये आम लोग पढ़ेंगे तो बहक जाएंगे। आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों और मशरिकों का रब वही है। हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत की सरकश शैतान से। आलमे बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से वो मारे जाते हैं भगाने के लिए, और इनके लिए दायमी अजाब है। इस कुरान की हिफाजत के लिए आसमानों पे पहरे लगा दिए गए, मगर जो कोई एक आध बात उचक के ले भागे तो फौरन इसके पीछे दहकता शोला लग जाता है। इन काफिरों से पूछो, क्या इनका पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या इनका जिन्हें हमने इनके अलावा पैदा किया? हमने इंसानों को लेस्तर मट्टी से पैदा किया, बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है और ये मस्खरापन कर रहे हैं। और जब इन्हें नसीहत की जाती है ये नहीं मानते, और जब किसी मौजजे को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जादू ही है, क्या जब हम मर जाएंगे और खाक और हड्डी हो जाएंगे फिर क्या सचमुच हम उठाए जाएंगे, क्या हमसे पहले के हमारे बाप दादा भी? हैरत ही हैरत थी उनको। बस आप जवाब दीजिए हाँ, और तुम जलील भी हो गए। वो तो एक जोर की झिड़की है कि यकायक ये देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, यही जजा सजा का दिन है। अनएक्सपेक्टेड लगेगा उनको ये दिन, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना। कहा जाएगा यही फैसले का दिन है जिसे तुम छुटलाते रहे जालिमों को और इनके हमराहियों को, और जिन जिन की वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करते थे। क्या कहा जाएगा सुनिएगा, अगली आयतों को देखते हुए दोबारा इसी मौजू पे गौर कीजिएगा जो हमारे इस बारे में चल रहा है। बहुत बड़े बनते थे, क्या हो गया? वकीफूहुम इन्नहुम मसऊलून। इन सबको जमा करके इन्हें दोजख की राह दिखा दो और इनको ठहरा लो, इसलिए कि इनसे जरूरी सवाल किए जाने वाले हैं। जैसे एयरपोर्ट पे जहाज की तरफ जाते जाते किसी को रोका जाए कि एक्सक्यूज मी सर, जरा वापस आइए, आपको काउंटर पे बुलाया जा रहा है। जान ना निकल जाए कि पता नहीं क्या निकल आया सामान में से, डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम आ गया। वहां जाते जाते इनको रोका जाएगा, इधर आइए, हमें आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। और सवाल जवाब सुनिए, तुम्हें क्या हो गया कि इस वक्त तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते? बड़े दावे थे मदद के करने वाले पूछने वाले। मा लकुम ला तनासरून, क्यों मदद नहीं करते? बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, वो तो आज बड़े मुस्लिम बने बैठे हैं। तो याद रखिए कि मदद तलब करने के दो तरीके हैं, या का नस्ताइन कहते हैं जवाब, तो क्या मतलब है कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब नहीं की जा सकती? तो एक मदद होती है मा तहत अल असबाब विद यूजिंग मीन्स। मैं आपसे कहूँ मुझे पानी ला दें, मुझे पता है कि आप यहाँ से उठेंगे, जाकर ग्लास लेंगे, फ्रिज से पानी निकाल लेंगे, फिर लेकर आएंगे, ये तो जायज़ है। क्या आपने इतने असबाब इस्तेमाल किए? इंसान का अल्लाह से मदद मांगना दुआ है, और इंसानों का दुनियावी कामों में एक दूसरे से मदद मांगना इस कैटेगरी में आता है। लेकिन मैं आपके बारे में ये तसव्वुर करूँ आप यहाँ बैठे बैठे पानी का ग्लास मुझे पेश कर देंगे, तो ये जायज़ नहीं। ये है मा फौक अल असबाब विदाउट यूजिंग द मीन्स। जितने भी कब्रों पे शिर्क हो रहे हैं ना उसमें ये, आज हम कब्र के शिर्क और दुआएं मांगने को टच नहीं करेंगे, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ जितना आयत में आ गया। लेकिन लोग जो बुजुर्गों से और फौत शुदगान से दुआएं मांगते और बुतों से मदद मांगते हैं, बाज़ मज़ाहरे कायनात से मदद मांगते हैं, यानी सूरज चांद सितारों को पूछते हैं, ये सब कुछ इसमें आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, बल्कि वो सब के सब आज फरमाबरदार बन गए, वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवालों जवाब करने लगेंगे, कहेंगे तुम तो हमारे पास हमारी दाई तरफ से आते थे। वो जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमानदार ना थे, और कुछ हमारा जोर तो तुम पर था भी नहीं, बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। ये आयतों का सेट नोट कर लीजिए, ये हैं वो आयतें जो आपको इस मौजू को मजीद समझने में मदद देंगी अगर आप गौर से इसको पढ़ लें। जहन्नुम के दरवाजे पे खड़ा करके ऐसे लोगों के सवाल जवाब हमें सुना दिए गए कि जिनके ऊपर नजरें लगाकर लोगों ने काम किए,
क्योंकि हम इनको नजर देते हैं, नियाज देते हैं, हम इनके आगे रुकू सजूद करते हैं, हम इनकी कब्रों पे पानी डालते हैं, हम चंदे करते, चादरें चढ़ाते, फूल देते लेते। याद रखिए कि तकरीबन 500 से ज्यादा आयते हैं कुरान पाक में कि जिसमें ये बताया गया है कि अल्लाह के माँ सिवा के साथ वो चीज़ें रखना जो अल्लाह की खूबियाँ, ये शिर्क है। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि, उससे भी ज्यादा भटका हुआ कौन है जो अल्लाह के माँ सिवा को पुकारे। देखिए दुनिया में शैतान से बुरा तो कोई नहीं ना मॉडल। वो भी कहता रब्बी फानज़िरनी, कह रब मुझे तू दे मोहलत, उसने भी नहीं कहा रब्बे फुला रब्बे फुला रब्बे फुला। आज आप देखिए कि नसारा की गुमराही का जरिया क्या बनी, शख्सियत परस्ती। हजरत ईसा की शख्सियत में ऐसे खोए के गलूफ किया और पहले उनको इब्नुल्ला कहा और फिर ईसा को अल्लाह ही कह दिया। तो ये सारी चीजें आपको मुझे बता रही हैं कि हम कैसे अल्लाह ताला के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लें इस दुनिया में, वरना बहुत मुश्किल होगी। जवाब सुनिए, और हमारा तो कुछ जोर ना था तुम पर बल्कि तुम खुद ही सरकश थे, यानी हमने मजबूर थोड़ी किया था। तुम अपनी खुशी से आते थे, तुम्हें लगता था कि हमारे दरों से आस्तानों से तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए तुम आ जाते थे। अब तो हम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी है कि हम अजाब चखने वाले हैं, बस हमने तुम्हें गुमराह किया। हम तो खुद भी गुमराह थे, इसको हाईलाइट कीजिए। वहां जाकर कोई उस्ताद कह दे कि असल में मैंने भी नहीं था पढ़ा, जो मुझे समझ आई मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या हाल होगा उन स्टूडेंट्स का जो फेल होने वाले हैं? मिस गाइड करने वालों के साथ क्यामत के दिन यही होने वाला है। सो अब आज के दिन तो सब के सब अजाब में शरीक हैं। हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते हैं, यानी अब क्या फायदा, अब तो डिक्लेरेशन का टाइम है, तैयारी तो होगी नहीं। तो याद रखिए कि जब लोग इंसानों के पीछे लगते हैं ना तो उसके कुछ असरात होते हैं, नोट कीजिएगा। 29 से 34 सौफात की रोशनी में शख्सियत परस्ती के इनफरादी असरात क्या होते हैं, कुंद जहनी का सबूत है ये। आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहते, अपनी सोच खत्म हो गई, आपने दूसरों ही की सोच से सोचना शुरू कर दिया, अपनी शख्सियत के मस्क होने का ये सबूत बन जाता है। चलो तुम इधर को हवा हो जिधर की, वाला असूल है। और आप देखिए हर इलाके का अलग बुजुर्ग है, सिंध वाले बेचारे पंजाब वालों के पास नहीं आ पाते क्योंकि ट्रेवलिंग प्रॉब्लम है, पंजाब वाले जाकर बलूचिस्तान के किसी बाबा जी से नहीं मांग सकते तो अपने अपने इलाकों में छोटे छोटे हेल्पर रख लिए, आउटलेट्स, नाउज़ुबिल्ला। वो रब जो हर जगह फनी करीब, उसको छोड़कर दूसरों के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं। कुछ शख्सियात एक शहर में मशहूर हैं, कोई दूसरे इलाके में, कोई एक सूबे में, एक तीसरे में, कोई एक मुल्क में, कोई दूसरे में। अल्लाह तो हमारा वर्ल्ड वाइड फेमस है, हम उसको छोड़कर किसी और पे नजरें क्यों लगाएं? तो पस्त किरदारी की तरफ ये ले जाती हैं चीजें। फिर फरमाइए वो लोग हैं जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो ये सरकशी करते थे और कहते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पे छोड़ दें? यानी ये भी बड़ा मसला है, बात भी समझ आ जाए ना लोग फिर भी नहीं छोड़ने को तैयार, कि लो आप सारी जिंदगी की रिवायतें कहा फिर माँ बाप के तौर तरीके छोड़ दें। आज इसी बेस पे आप देखिए लोग नहीं छोड़ते, ना बुत को पूजना छोड़ते हैं, ना किसी हजर शजर को पूजना छोड़ते हैं, क्योंकि जो माँ बाप करते थे हम तो वही करेंगे। फरमाए नहीं नहीं बल्कि नबी तो हक यानी सच्चा दीन लाए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं, यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो, तुम्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे, मगर अल्लाह ताला के खालिस बरगुजीदा बंदे। यानी वाकई अगर शख्सियात पूजी जाने के काबिल होती ना तो अल्लाह के नबी थे, लेकिन आप देखेंगे अल्लाह के नबियों को पूजा नहीं गया, उनको फॉलो किया गया। अब आगे उन्हीं के जिक्र हैं, तस्करे हैं। यहाँ आपको मुखलिस और मुखलस का फर्क दिखेगा। हम मुखलिस हैं ना तभी हम इखलास पे काम कर रहे हैं क्योंकि इसम फाइल है, मुखलस वो होता है जिस पे काम कर दिया मफूल। तो यहाँ बार बार एक तो आपको मुखलस का लफ्ज मिलेगा, फिर आप देखिएगा कि अम्बिया कराम की बर्थडेस नहीं मिलेंगी, उनकी बरसियों की तारीखें नहीं है, उनके मिशन का जिक्र है। अब आप एक तरतीब से अम्बिया कराम की स्टोरी सुनने वाले, इसलिए मैं आपको पहले से अलर्ट कॉल देकर चंद चीजें बताना चाहूंगी कि दुनिया में जिस तरह अच्छाइयां फैलती हैं ना टीम वर्क से, इसी तरह बुराइयां भी टीम वर्क से फैलती हैं। कुछ लोगों ने शिर्क के जाल फैला दिए और कुछ लोगों ने इस शिर्क को मिटाने पे काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला जब दुनिया को देखता है कि वहां गंदगियां फैलती जा रही हैं तो उसके बाद अल्लाह ताला फिर मुख्तलिफ लोगों को भेजता है। इनको आज हम अम्बिया कराम कहते हैं, हजरत आदम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के अम्बिया कराम, अल्लाह ताला जहां उनका जिक्र लाते हैं उनके मिशन की बात है, दुनिया से शिर्क के कह लीजिए कि आखिरी निशान मिटाने के लिए आते थे। उनका मिशन क्या था। और सलाम का लफ्ज़ बार बार आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि अल्लाह सल्यूट करता है उनको। असल में अम्बिया कराम को दुनिया में खातिर ख्वाह वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं। इसके बरक्स शख्सियात के पीछे जाने वाले ज़िंदगी में खूब अपने लिए अच्छे प्रोटोकॉल्स और जागीरदारियाँ कायम कर चुके होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इस कुरान पाक के ज़रिए और कल क़यामत के दिन अम्बिया कराम को जो सिफारिश का हक़ देगा ना, वो असल में एक किस्म की इज़्ज़त अफजाई होगी कि आइए अब आप इन लोगों को अपने हाथ से इनाम दीजिए। पढ़ते जाइए और दुआ करते जाइए कि अल्लाह हमें मुखलिस से उठाकर मुखलस बना दे। आयत 40। मगर अल्लाह ताला के मुखलस बंदे इन्हीं के लिए मुकर्रर करदा रोजी है, हर तरह के मेवे और बाइज्जत और इकराम होंगे, नेमतों वाली जन्नतों में तख्तों पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। क्यों? इसलिए कि दिलों में कदूरत जो नहीं है। जब दिल में बाल आ जाता है ना, तो इंसान सामने आमने नहीं बैठा, बैठना पसंद ही नहीं करता। तो मुखलसीन कौन? ईमान वाले, उसके बाद अमल साले पा गए और फिर आखरत में इनामात के मुस्तहक बन गए। आखरत में इनामात का हकदार बनने के लिए हमें शख्सियत परस्ती छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। वहां क्या मिलेगा? जन्नत की चंद नेमतों को जहन में लाते हुए सुनिए। युताफ अलैहिम बिकासिम मिन मईन, जारी शराब के जाम का इन पर दौर चल रहा होगा जो साफ शफाफ और पीने में लजीज होगी। यानी दुनिया की शराब पे क्यास ना कोई करे, ये तो मशरूब है। ना इससे सर दर्द हो ना इसके पीने से बहके, और इनके पास नीची नजरों वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी जैसे छुपाए हुए अंडे। जन्नती एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे, अल्लाह अकबर। खाल खाइलो मिनहुम इन्नी कान अली करीन, इनमें से कहने वाला कहेगा मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था, क्या तू क्यामत के आने का यकीन करने वालों में से है? क्या जब हम मरकर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या उस वक्त हम जजा दिए जाने वाले हैं? कहेगा तुम चाहते हो कि झांक कर देखो। यहाँ से अब जन्नती और जहन्नमियों के बीच में कॉन्फ्रेंस कॉल देख रहे हैं आप। झांकते ही से बीचों बीच जहन्नुम में जलता हुआ देखेगा, कहेगा वल्लाही करीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर दे, अगर मेरे रब का एहसान न होता तो मैं भी दोजख में हाजिर किए जाने वालों में होता। क्या ये सही है कि हम मरने वाले ही नहीं सिवाय पहली एक मौत के, और ना हम अजाब किए जाने वाले हैं? यानी वहां जाकर अफसोस होगा कि हमने शिर्क क्यों ना छोड़ा, और अपने वो दोस्त जिनको बेवकूफ कहते थे वो जन्नतों में बैठे आज मौज कर रहे हैं। कितनी हसरत होगी उस वक्त इंसानों को, उस वक्त पता चलेगा कि कौन हकीकत में मेरा दोस्त और कौन दुश्मन। फिर तो जाहिर बात यही है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्ना हाज़ा लहु अल-फौज़ुल अज़ीम लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। अल्लाह हमें इसी की तौफीक दे, हम इस जन्नत के करीब ले जाने वाले काम करें। क्या ये मेहमानी अच्छी है या जख्खूम का दरख्त जिसे हमने जालिमों के लिए सख्त आजमाइश बना रखा है? बेशक वो दरख्त जहन्नम की जड़ में से निकलता है, जिसके खोशे शैतानों के सरों जैसे होते हैं। जहन्नम के खाने देखिए, एक छोटी सी मछली का कांटा फंस जाए तो क्या हाल होता है। इस बात को सुनते हुए सुनिएगा, जहन्नमी इस दरख्त में से खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे, फिर इस पर गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, फिर इन सब का लौटना जहन्नम की भड़कती हुई आग की तरफ होगा। यकीन मानो कि इन्होंने अपने बाप दादा को बहका हुआ पाया, ये इन्हीं के निशाने कदम पर दौड़ते रहे, इनसे पहले भी बहुत से अगले बहक चुके। मैं इन आयतों को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे वो छोटे छोटे मासूम बच्चे याद आ जाते हैं जो ऐसे शिर्क करने वाले माँ बाप की गोदों में होते हैं, और इसी तरह वो भी यही करेंगे जो ये करते गए। तो क्या पता चला कि आखिरत में दो तरह की मेहमानी है, एक मोमिनीन की, मुकर्रर रिस्क है, फल है, मेवे है, शराब तो है लेकिन उसमें शराब वाली गंदगी नहीं, न तकलीफ न बेहुदा गोई, और नीची निगाह वाली बाहया हूरें, ये है इनाम। इसके बरक्स शख्सियात में खोने वाले, शिर्क करने वाले, उनका रिस्क जक्कूम का दरख्त, गरम पीप मिला पानी और अजाबे अलीम है। क्या हाल होगा उस वक्त? आज तो कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर जिए ना, और वहां क्या हालात होंगे? ऐसी ही चीजों को अपने सामने रखकर जब इंसान देखता है तो उसका तो दिल तड़प के रह जाता है कि मैं कैसे उससे अपने आप को बचा लूं। और जितना ज्यादा इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे उतना ज्यादा इंशाल्लाह दुनिया में दुआ होगी। अल्लाह से एक दुआ शुरू कर दें आज के बाद, अल्लाह वो शिर्क जिसको मैं जानता हूँ और वो शिर्क जिसको मैं नहीं जानता, मुझे उससे बचा ले। बड़ी प्यारी दुआ इस बारे के साथ, क्या अल्लाह मुझे उस शिर्क से भी बचा जो मैं जानता हूँ और उस शिर्क से भी बचा जिसे मैं नहीं जानता। और अजाब अलीम की सजा है ऐसे लोगों के लिए। सही मुस्लिम की रिवायत है 7089, अनस बिन मालिक रावी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन पर एक नेकी के लिए भी जुल्म नहीं करेगा अल्लाह ताला, इसका बदला दुनिया में देगा और आखिरत में भी। काफिर को इसकी नेकियों का बदला दुनिया में दिया जाता है, यहाँ तक कि जब आखिरत होगी तो इसके पास कोई नेकी ना रहेगी जिसका वो बदला दिया जाए, यानी उसके सारे पैसे दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला दुनिया में हमें कुफर और शिर्क के खात्मे के लिए चुन ले। फिर अल्लाह ताला अपने चुने हुए लोगों की बात करते हैं। आयत 72, वलकद अरसलना फीहि मुनज़िरीन, जिनमें हमने डराने वाले रसूल भेजे थे, अब तू देख ले कि जिनको धमकाया गया था इनका अंजाम कैसा हुआ, सिवाय अल्लाह के बरगुजीदा बंदों के। अल्लाह में भी मुखलस बना ले। और हमें नूह अलैहि सलाम ने पुकारा तो देख लो हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं, हमने इसे और इसके घर वालों को इस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया। अब अमली नमूने हैं शख्सियत परस्ती से उठकर अल्लाह ताला की परस्तिश करने वाले, यानी ब्राह रास्त नूह ने अल्लाह को पुकारा, कोई साबका नहीं, कोई लाख नहीं, कोई बीच में नहीं। और अल्लाह ने ना सिर्फ ये कि दुआ सुनी बल्कि वो मुसीबत भी दूर कर दी। तो आज से नियत कीजिए ब्राह रास्त अल्लाह को पुकारना, ये सर झुकेगा तो उसके आगे, ये माथा टिकेगा तो उसके आगे, ये अक्ल झुकेगी रुकू क्याम दुआ होंगे तो अल्लाह के सामने। कहीं अनजाने में हम अपना ईमान न बेच दें दुनिया की चंद नेमतों को पाने के शौक में। और अल्लाह ऐसे लोगों का नाम दुनिया में कैसे रखते हैं, और इसकी औलाद को हमने बाकी रहने वाला बना दिया, और हमने इनका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला दिया करते हैं, वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे, फिर हमने दूसरों को डुबो दिया। और इस नूह अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करने वालों में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, जबकि अपने रब के पास बेऐब दिल लाए। जी, ये बेऐब दिल लेकर जाना है, किसी और की मोहब्बत में नहीं तोड़ना। इस जा रब्बहू बिकल्बिन सलीम, बेऐब दिल की निशानियां क्या थी? उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम क्या पूछ रहे हो, क्या तुम अल्लाह के सिवा खड़े हुए माबूद चाहते हो? तो ये बतलाओ कि तुमने रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है, यानी अल्लाह को छोड़कर इन मट्टी के बुतों से मांगते हो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक निगाह सितारों की तरफ उठाई और कहा, इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूँ। इस पर वो सब इससे मुंह मोड़े हुए वापस चले गए। आप इनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते हो? शऊर बेदार किया जा रहा है। फिर तो पूरी कुव्वत के साथ दाएं हाथ से इन्हें मारने पर पिल पड़े। वो बुत परस्त दौड़े भागे आपकी तरफ मुतवज्जे हुए, तो आपने फरमाया, तुम इन्हें पूछते हो जिन्हें खुद तराशते हो, हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया। ये होता है सोल सर्चिंग स्टाइल ऑफ तबलीग। अगला खुद सोचने लगे, अपने अंदर झांकने लगे। लेकिन अमूमन शिर्क करने वाले दलील के मैदान में जब हार जाते हैं ना, तो फिर धमकियों में आ जाते हैं। वही यहाँ वो कहने लगे, इसके लिए एक मकान बनाओ और इस दहकती हुई आग में इसे डाल दो। उन्होंने तो इस इब्राहिम के साथ मकर करना चाहा, लेकिन हमने इनको नीचा कर दिया। और इस इब्राहिम ने कहा, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। तो क्या सीखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से? देखिए, यहाँ उनकी खूबी आई है, इस जा रब्बहु बिकल्बिन सलीम। कल्बे सलीम क्या है? अगर आप इसको डिक्शनरी से देखें ना, तो सीन लामीम सलमा होता है, लेकिन जब ये सलीम और फ़ईल है ना, तड़पने वाला दिल, सांप के डसे हुए को सलीम कहते हैं। जब सांप किसी को डसे तो वो बंदा तड़पता है ना, तो कल्बे सलीम क्या है? जो तड़पता है, जिस इंसानियत को जहन्नम से बचाने की तड़प लग जाती है। ये दिल खुदगर्ज़ नहीं होता, ये अल्लाह को पहचानने वाला होता है, जहन्नुम से खुद भी डरता है, दूसरों को डराता है, कायनात की तरह फरमाबरदार होता है जैसे सूरज चांद फरमाबरदार है। ये प्लानिंग करता है, ये लोगों से नहीं अल्लाह से डरता है, और कल्बे सलीम वाला नेकी करके खुशी महसूस करता है, और इसको गुनाह के बस सख्त कुल्क होता है। और ये अपने रिश्तेदारों और बिरादरी और ख़ानदान को गुनाह करते और गलत काम और शिर्क करते देखकर ये नहीं कहता, अब कौन बुरा बने, फूफो नाराज हो जाएंगी, चची माइंड करेंगी, खाला है, फिर मैं क्यों कहूँ, याद रखिए आपके रिश्तेदारों में जो किसी शख्सियत परस्ती का शिकार होकर शिर्क परस्त हो चुका है उसके तक पहुंचना आपका मेरा फर्ज है। अल्लाह के नबी का 13 साल का जिहाद और जिद्दोजहद मक्का में अपने रिश्तेदारों के साथ ही। तो जब कल्बे सलीम होती है ना तो एक इंसान फिर शिर्क होता नहीं देखता। और यहाँ देखिए कि हजरत इब्राहिम ने सिर्फ जुबान से नहीं हाथों से भी जिहाद किया, क्योंकि हदीस में आता है कि जब तुम कहीं बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से रोको, और जुबान से नहीं तो फिर दिल में बुरा करो। और ज़ालिका दफ़ुल ईमान, ये मुस्लिम की रिवायत है कि ईमान का बड़ा हल्का दर्जा। तो क़ल्बे सलीम कह लीजिए कि क़ल्बे सलीम के साथ जब मिलती है तो फिर बुतों की बेबसी नजर आने लगती है। कैसे मिट्टी और लकड़ी के बुतों के टूटने पर गजबनाक हुए कि हजरत इब्राहिम के लिए आग जला दी। उर्क का इलाका था जहाँ इब्राहिम भेजे गए, दुनियावी तौर पर बहुत तरक्की याफ्ता था, यानी उस दौर की एक सुपर पावर थी। कहते हैं कि गिनती इन्होंने ईजाद की, 32nd का पैमाना इन्होंने ईजाद किया, लिखना पढ़ना इन्होंने ईजाद किया। आज भी देख लीजिए कि इनका नाम मौजूद है। स्टेटस कॉन्शियस थे लेकिन अक्ल के मैदान में सलीम ना हो सके और अल्लाह को ना पहचाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके साथ ये सारा मामला किया। अब जाहिर लगता है कि दीन पे अमल करते खानदान छूट जाएगा, नाराज होंगे। यकीन कीजिए वो आज नाराज है ना, चंद सालों बाद आपसे ही मसाइल पूछने आएंगे। ये अल्लाह तआला की तरफ से इब्राहिम की एक आजमाइश थी और वो इसमें पूरे उतरे। तो क्या सीखा कि शयातीन और काहिन, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तियों का अपने बुजुर्गों से ये शिकवा होगा कि जो तुम करते थे हम वही करते हुए तुम्हारे पीछे यहाँ पहुंच गए, अब कुछ करो हमारे लिए। और वहां की मेहमानियां जक्कूम होंगी या तूबा होगा। अब आप देख लीजिए कि अगर तौहीद के साथ जिएंगे तो तूबा और दूसरी तरफ जक्कूम के खाने। इसी तरह पता चला कि नेक लोगों के नाम जिंदा रहते हैं। आज नेकी कर जाइए, कल आप तो नहीं होंगे पर आपका नाम जिंदा होगा। इसी तरह आप देखिए बुतकदा, आजर और इब्राहिम। आजर बाप था, बुतकदा कौम और खानदान वो जगह थी जहां वो शिर्क करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर तरह के इम्तिहान में पास हुए, अब अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। आयत 100 देखिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। यहाँ देखिए वक्त का नबी जैसे दुआ मांगेगा वो ठीक तरीका होगा। ये आज के कहने सुनने वाले लोग, तो यहाँ से बेऔलाद लोग भी दुआ मांगना सीखें। कैसे मांगनी है, किस दर पे गए थे, रब के सामने खड़े हैं। ऐ मेरे रब, मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। तुमने ने एक बुढ़बार बच्चे की बशारत दी, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि इसके साथ चले फिरे, और आप जानते हैं कि ये उम्र बड़ी प्यारी होती है, इस उम्र में बच्चे अच्छे बड़े लगते हैं। लेकिन इब्राहिम की एक और आजमाइश आ गई। पहली आजमाइश में पूरे उतरे और अब दूसरी आजमाइश है। बंदा मोमिन की सारी जिंदगी आजमाइशों में गुजर जाती है। पहले खानदान, बिरादरी और बाप के साथ मामला था, तो अब बच्चे के साथ। ये मोहसिन बनने के दर्जे होते हैं। हिजरतों और कुर्बानियों से गुजार गुजार कर अल्लाह ताला ऐसे मामला पे ले जाते हैं। अब बच्चे की गर्दन पे छुरी चलने लगी है, देखिए क्या आसमान भी थर्रा रहा होगा और जमीन भी कांप रही होगी। बाप के बेटे के साथ अपने ख्वाब को शेयर करने का जिक्र, काला या बुनैया इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अस्बहुक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे जिबा करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता के तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, या बते फल मा तू मर, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। किसने इतनी प्यारी तरबियत की, ये मकतब की करामत थी या किसी का फैजाने नजर था। याद रखिए जो माँ बाप हिजरतों, कुर्बानियों और मोहसिन के दर्जे पे अपने खानदानों की गलत रस्म और रिवाज से टकराते हुए जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला उनकी नस्लों में इस्माइल पैदा कर देते हैं। इतना फरमाबरदार बेटा, ख्वाब की बात को कह रहा, अब्बा जी कर दीजिए, आज का तो बच्चा वैसे ना माने। कहाँ ख्वाबों की बातें, आज का बच्चा कोई बड़े पढ़े लिखे माहौल में होता तो 911 को कॉल करता, 1211 को बुलाओ, अब्बा जी मुझे ख्वाब में कत्ल कर रहे हैं, पकड़ के ले जाओ। वो तो खुशी खुशी ले जाएंगे चाहे सबूत ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा, आज हमने अपनी नस्लों को किस दाव पे लगा दिया। या बायफल मा तुमर, अब्बा जी वो कर दीजिए जो आपको हुक्म दिया गया। सता जी दूनी, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। गरज जब दोनों मती हो गए और उस बाप ने उस बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया, तो हमने आवाज दिया, इब्राहिम यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। दरहकीकत ये खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा जबीहा इसके फिदिये में दे दिया, और हमने इनका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, हम नेकुकारों को इसी तरह बदला देते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। और जब एक बेटे की गर्दन पे छुरी रखी जो चली भी नहीं, वो भी बच गया, और उसके तोहफे में अल्लाह ने एक और बेटे की खबर दी, और हमने इनको इसहाक अलैहिस्सलाम नबी की बिशारत दी जो सालेह लोगों में से होगा, और हमने इब्राहिम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नासिल फरमाई। ये पढ़ते हैं आप नमाज में, कमा बारक ताला इब्राहिम, बरकतों का तस्करा। ये बरकतें मिलती हैं कुर्बानी और हिजरतों से, और इन दोनों की औलाद में बास तो नेक बख्त और बास अपने नफ्स पर सरीख जुल्म करने वाले हैं। यकीनन हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर बड़ा एहसान किया। चुने हुए लोगों की कहानियां पढ़ते जाइए, आपका मेरा अकीदा खुल कर सामने आता जाएगा। कैसे अल्लाह ताला हमें इनकी बातों से सबक सिखा रहे हैं कि हम अपनी फिक्र करें, तो क्या पता चला फायदे में कौन रहेगा क़यामत के एतबार से, मवाहिद यानी सिर्फ एक दर का सवाली, एक अल्लाह के दर पे झुकने वाला, या फिर शख्सियात में खोने वाला। आप देखिए कि रसूलों की दावत एक रब की बंदगी, शैतान की दावत बहुत सी शख्सियात की बंदगी। हमें कुरान पाक का सच्चा इल्म लेकर खुद को और अपनी नस्लों को इन फितनों से बचाना है, तो कुरान दोस्त बनाइए नस्लों को। आज भी बड़े बड़े बुत खड़े हैं आपके बच्चों के रस्तों में, आपके जवान बच्चों को आगे लगा के ले जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो अपने बच्चों को शख्सियात के शहर से निकालिए और कुरान दोस्त बनाइए। अब एक और नबी का जिक्र, आयत 115 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो एक से एक कहानी है हमारी, और ये कौन थे, मूसा और हारून। वनज्जैनाहुमा वकौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, यानी वक्त के फिरौन और फिरौनी कल्चर से निजात दी, और इन्हें और इनकी कौम को बहुत बड़े दुख दर्द से निजात दी, और इनकी मदद की तो वही गालिब रहे, और हमने इन्हें बाजे और रोशन किताब दी, और इन्हें सीधे रास्ते पर कायम रखा, और हमने इन दोनों के लिए पीछे आने वालों पर ये बात बाकी रखी कि मूसा और हारून अलैहिमस्सलाम पर सलाम हो। आज भी आप देखिए कि सल्यूट होता है ना, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, या 23 मार्च को आप देखते हैं, या 14 अगस्त या 15 अगस्त को आप देखते हो उनके परेड होती है ना, तो वो एक किस्म की ऑनर होती है फौज के हक में। अंबिया कराम के साथ भी अल्लाह ताला का मामला यहाँ ऑनर देने वाला मामला है कि सारी जिंदगी हमारे दीन के लिए चलने आने जाने वाले, आज इनको प्रोटोकॉल दे दो। बेशक हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं, यकीन ये दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी पैगम्बरों में से थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह से डरते नहीं हो, क्या तुम बाल नामी बुत को पूजते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो। ये बाल नाम का एक बुत था जिसकी ये कौम पुजारी थी, उसका जिक्र है। अल्लाह ताला जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले तमाम बाप दादाओं का रब है, लेकिन कौम ने इन्हें झुटलाया, आपस वो जरूर अजाब में हाजिर किए जाएंगे सिवाय अल्लाह के मुखलस बंदों के। अल्लाह में भी मुखलस बनाए, या नोट करें आज के दौर में दीन के नाम पे भी अगर अल्लाह आपको तौहीद परस्त बना दे तो आप मुखलस हैं, क्योंकि आज दीन तो बहुत, दीन वाले भी बहुत, लेकिन ये नहीं पता कि उस दीन में कहीं शिर्क या मेजिश तो नहीं हो चुकी। हमने इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर पिछलों में भी बाकी रखा कि इलियास पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे। बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी पैगम्बरों में से थे, हमने इन्हें और इनके घर वालों को सबको निजात दी सिवाय उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में रह गई। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया, यानी शिर्क की मौजूदगी में शौहर चाहे नबी क्यों ना हो, बीवी नहीं बची। और तुम तो सुबह होने पर इनकी बस्तियों के पास से गुजरते हो और रात को भी, क्या फिर भी नहीं समझते। और बिलाशुबा यूनुस अलैहिस्सलाम नबियों में से थे, जब भाग कर पहुंचे भरी कश्ती पर, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए, तो फिर इन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। फिर अगर ये बाकी बयान करने वालों में न होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक इसके पेट में ही रहते, यानी उनका लॉकडाउन क्यामत तक के लिए होता। बस इन्हें हमने चटियल मैदान में डाल दिया और वो इस वक्त बीमार थे, और इन पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। पहले कोई माना ना, जब आजमाइश में पूरे उतरे तो अल्लाह ने लाखों लोगों को फायदा दिलवा दिया। शायद हमने इसी को 1.25 लाख में डाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या लिया हमने अधूरे इल्म से। बस वो ईमान लाए और हमने इन्हें एक जमाने तक ऐश व इशरत दी। इनसे दरियाफ्त कीजिए कि आपके रब की तो बेटियां हैं और इनके बेटे हैं, या ये इस वक्त मौजूद थे जबकि हमने फरिश्तों को मुअन्नस पैदा किया। आगाह रहो, ये लोग सिर्फ अपनी बुख्तान बाजी से कह रहे हैं, यानी ऐसा नहीं। याद रखिए कि शिर्क जो है ना, ये ईमान बिल मलाइका की बिगड़ी हुई सूरत है। हर दौर में फरिश्तों के साथ कुछ ना कुछ लोगों ने मामला ऐसे किए। तो आप आज एक जुमला लिखिए, बुत परस्ती ईमान बिल मलाइका की बिगड़ी हुई सूरत है। यूनुस को मछली के पेट से अल्लाह ने तस्बीह के जरिए निकाला और कर्ब से निकाल दिया। आज दिल से दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे भाई बहनों को शिर्क से निकाल दे, शख्सियात की परस्तिश की बजाय अल्लाह के पुजारी बना दे, अल्लाह की पूजा करने वाले बन जाएं। और जितनी ज्यादा तमन्ना करेंगे, तड़प करेंगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही देगा। बस वो ईमान लाए, हमने ने एक जमाने तक ऐशो इशरत दी, इनसे दरियाफ्त कीजिए कि क्या आपके रब की तो बेटियां हैं और इनके बेटे हैं, या ये इस वक्त मौजूद थे जबकि हमने फरिश्तों को मोनस पैदा किया। गा रहो, ये लोग सिर्फ अपनी बुख्तान परदाजी से कह रहे हैं। दोबारा इन आयतों को सुनकर दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह हमारे लिए इन चीज़ों को समझना आसान कर दे। और क्या कहता है अल्लाह ताला कि अल्लाह की औलाद है, यकीनन ये महज झूठे हैं। क्या अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी? तुम्हें क्या हो गया, कैसे हुक्म लगाते फिरते हो? क्या तुम इस कदर भी नहीं समझते, या तुम्हारे पास इसकी कोई साफ दलील है? तो जाओ, अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब लियो। देखिए, एक एक दलील आज के टॉपिक के साथ मैच हो रही है। आज भी यही वैसे होती हैं, लोग नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, बुरा मनाएंगे। प्रैक्टिकली ऐसा हो चुका कई जगह कि आप लोगों को जरा सी बात करें, पहले बड़े खुशी से आपकी बात सुनेंगे, जरा सी कोई ऐसी सवाल उठाने वाला ये बात कर दें तो कहेंगे ना ना, आप हमें इनसे दूर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो। तो ये भी एक शिर्क का तोहफा होता है कि बंदा इतना ज्यादा फिर डिफेंसिव हो जाते इस बात पे कि हक से हक वाली बात भी सुनना नहीं चाहता। और लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात के दरमियान भी कराबत ठहराई है, नाउज़ुबिल्लाह। लोग कहते थे कि अल्लाह का जिन्नों के साथ ताल्लुक जुड़ा तो नतीजे में फरिश्ते पैदा हुए, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह। और हालांकि खुद जिन्नात को मालूम है कि वही सकीदे के लोग अजाब के सामने पेश किए जाएंगे। जो कुछ ये अल्लाह के बारे में बयान करते हैं, इससे अल्लाह बिल्कुल पाक है, सिवाय अल्लाह के मुखलस बंदों के। अल्लाह में मुखलिस से ऊपर उठाकर मुखलस करते। यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे माबूदाने बातिल किसी एक को भी बहका नहीं सकते सिवाय इसके जो जहन्नमी है। फरिश्तों का कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है, यानी हमारा एक मुकाम है, बस इससे ऊपर हम नहीं बढ़ते। और हम तो बंदगी इलाही में सफ बस्ता खड़े हैं और इसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। फरिश्तों में देखिए कितनी आजजी है। लोग जो मर्जी कहने लग जाए, नेक लोग तो अपने अंदर बहुत ही आजजी महसूस कर रहे होते हैं। यही अंदाज यहाँ फरिश्तों का दिख रहा है। कुफार तो कहा करते थे कि अगर हमारे सामने अगले लोगों का जिक्र होता तो हम भी अल्लाह के खालिस बंदे बन जाते, लेकिन फिर इस कुरान के साथ कुफर कर गए। बस अब अनकरीब जान लेंगे, और अलबत्त हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए सादिर हो चुका है कि यकीनन वही मदद किए जाएंगे। यह अल्लाह का वादा, तौहीद वाला मवाहिद हमेशा अल्लाह की मदद में होता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, और हमारा ही लश्कर गालिब और बरतर रहेगा। अब आप कुछ दिन तक इनसे मुंह फेर लीजिए और इन्हें देखते रहिए, ये भी आगे चलकर देख लेंगे क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। सुनो, जब हमारा अजाब इनके मैदान में उतर आएगा, इस वक्त इनकी जिनको आगाह किया गया था, यानी डराया गया था, इनकी बड़ी बुरी सुबह होगी। जब शिर्क के नुकसान दुनिया में भुगतने पड़ते हैं तो फिर अल्लाह के अजाब घरों में टूटते हैं। आप कुछ वक्त तक इनका ख्याल छोड़ दीजिए, यानी अल्लाह के नबी इतना कुड़ते थे इन पे, का रिलैक्स्ड छोड़ दीजिए इनको। व तवल्लानहुम हत्ता हिन, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स्ड। क्योंकि कभी कभी दाइए दिन का दिल अंदर से खोलने लगता है, क्योंकि अजाब बड़े सख्त है ना, किसी के लिए भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि चाहे वो मोहब्बत में, चाहे गुमराही में, चाहे वो आबा परस्ती में ही क्यों नहीं, लेकिन शिर्क में पड़ा हुआ है। मुंह का टेस्ट खराब होने लगता है शिर्क और शिर्क की चीजों को देखकर, कहां बंदा उनको एंजॉय करे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आप थोड़ी देर इनको छोड़िए और देखते रहिए, ये भी अभी देख लेंगे। पाक है आपका रब जो बड़ी इज्जत वाला है हर उस चीज से जो मुशरिक बयान करते हैं। सलामुन अलल मुरसलीन। देखिए आयत सूरत का अख्तिताम कितना प्यारा है, और ये आखिरी जुमले इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक किसी मजलिस में हुई हुई बातों का कफारा है, बल्कि हजरत अली का भी ये कॉल है। किसी महफिल में जहाँ कीलो काल हुई, कुछ भी बात हुई, तो ये कलेमात कीजिए अदा, तो कफारा हो जाएगा। तो हम भी अल्लाह ताला से यही कहते हैं कि अल्लाह में अजाब नहीं चाहिए, اف ابھی عذاب بھی نہ یستعجلون، وہ عذاب مانگتے تھے، ہم اللہ سے کتاب مانگتے ہیں سدھرنے کے لیے. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں جو سیدھا کرتی ہیں، یا ڈنڈا یا استاد. جو استاد کی بات نہیں مانتا اس کو ڈنڈے کی بات ماننی پڑتی ہے. جو قومیں کتاب سے سبق نہیں لیتی، اللہ پھر ان کو اپنی پکڑ سے اور وباؤں سے اور عذابوں سے پکڑ لیتا ہے. تو اس سوچ کے ساتھ آخری کلمات پڑھیے سورت کے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی پڑھنے دیں. تو کیا سیکھا خاص طور پہ آیت 160 سے 161 میں؟ کیسے داعی دین جو خود سے جوڑتے ہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اگر کسی بھی میدان میں ہم دعوت اور تبلیغ سے جڑے ہوئے. پہلی بات ہے کہ دین کا علم نہیں سکھاتے یہ لوگ، خود سے گھڑی ہوئی باتیں سناتے ہیں، کہاوتیں، روایتیں، بزرگوں کے قصے، فلاں بزرگ کی کرامت، فلاں بابا جی کی یہ وہ. آپ سن کر دیکھیے آپ کو اس سے زیادہ نہیں ملے گا. شکر ہے کہ یہ قرآن اور سنت کی بات کم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام تو ان چیزوں کو پھر ویریفائی بھی تو نہیں کرتا نا. پھر اس سے بعض لوگ مالی فائدے لیتے ہیں، نذرانے بیلیں دی جاتی ہیں. میں نے خود دیکھا ایک ویڈیو میں کہ کوئی کچھ بول رہے اور لوگ اٹھ اٹھ کے اور کیا 100 100 کے نوٹ ان کے اوپر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے ہوں گے. اسی طرح یہ خود کو اعلیٰ عرفہ سمجھتے ہیں اور دوسری دینی شخصیات سے حسد کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ڈیرے کیوں بند ہو گئے، کیونکہ آپ پتہ نہیں گھر بیٹھ کر آن لائن بھی شرک کے کوئی مظاہر ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کیا سیکھا اس سورت کے خاتمے تک؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بڑے امتحان تھے، دونوں میں کامیاب ہوئے. ایک قوم اور باپ کے نام پر خاندان کو چھوڑنا تھا، خاندان کے شرک پہ تنقید تھی، عملی جہاد کی. آپ کو مجھے بھی اس پہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. اور دوسرا بیٹے کے معاملے میں آزمائے گئے. اس طرح مشرقین کا اللہ تعالیٰ کے لیے دوہرا معیار تھا، ایک طرف اللہ کو بھی پکارتے اور ایک طرف اپنے بتوں بزرگوں کو بھی پکارتے. اس طرح فرشتوں کے اوصاف دیکھے کہ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، ہمبل ہیں، عاجزی ہیں ان میں. اور پھر فرمایا شرک پہ جائیں گے تو عذاب الہی آ کر رہے گا، اور چاہے مشرقین کی بہتات کیوں نہ ہو اللہ اس شر سے مبرہ ہے. اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچائے. آگے ہے سورت سواد، 38 یعنی 38 نمبر کی سورت ہے اور 88 آیات ہیں اس کی. اس سورت میں آپ دیکھیں گے ضد کی بہت بات ہے، ہٹ درمی، شقاق. پہلی آیتوں میں آ رہا ہے، آیت دو میں بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. تو یاد رکھیے کہ حق کے رستے میں ایک ضد ہوتی ہے، خاص طور پہ جہاں جو موضوع چل رہا ہے اس میں بھی سمجھ لیجیے کہ کچھ لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی بجائے دوسری شخصیات کی طرف جانا غلط ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، سٹبننس کی وجہ سے وہ اس پہ اتنا کرتے ہیں. آپ اس پوری صورت کو پڑھیں گے بار بار آپ کو احساس ہوگا کیسے یہ جیسے کسی مشرق کو آپ سمجھائیں اور وہ آگے اور سٹبن اور کہ یہ تو میرے عقیدے ہی خراب کرنے لگ گئے ہیں. تو باطل پر سٹینڈ لینا ضد ہے، کانفیڈنس نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اور میں آج اگر اس پہ کوشش نہیں کریں گے تو کل کیا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ ضد بچے کی عادت ہوتی ہے، بڑے میں بھی اگر ضد نہ نکلی تو پھر وہ تو انا کا شکار ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواد والقرآن ذی الذکر. آپ دیکھیے کہ سواد کے ساتھ شروع ہوئی تو سورت کا نام سواد ہے، اور قرآن کی خوبیاں اس صورت میں بھی ہمیں بہت سارے آئیڈیلز دکھیں گے. اور آپ دیکھیں پچھلی پوری صورت میں کتنے خوبصورت انبیاء کا ذکر سنا، کسی ایک نے خود سے جوڑا، کسی ایک کا آج آپ کو نام دکھتا ہے. اسی طرح اس صورت میں آپ کو اس سے مختلف انبیاء ملیں گے، اور لکھے یہ وہ تھے جن کو نعمتیں دی گئیں. مثلا آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے جو اواب تھے، دولت اور اقتدار اور نبوت پا کر بھی راہ راست پر ہے، اولو الالباب میں ان کا ذکر ہے. حضرت داؤد کا ذکر 17 سے 29 میں ہے، ان کے اولو الالباب ہونے کا ذکر 29 میں ہے. پھر حضرت سلیمان نعمتوں میں بھی شکر گزار رہے آئے 30 سے 40 تک. اور حضرت ایوب، یہ بھی بہت دولت مند انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جب آزمائش کی تو سب کچھ نکل گیا، ان کا ذکر 41 سے 44 میں. ساری نعمتیں چلی گئیں پھر بھی صبر کرتے رہے. اور پھر 45 48 میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام اور الیس اور ذوالکفل علیہم السلام کا تذکرہ ہے. ان کو اگر آپ آئیڈیلائز کر کے ان کے طریقوں پہ چلیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. سواد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر دیا، उन्होंने हर चंद चीखो पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारे का न था। यानी जब अम्बिया कराम समझाते रहे तो ये समझे ना, और जब अजाब की झिड़क इनके ऊपर पड़ी और इनको अल्लाह ने किसी न किसी चीज में पकड़ा तो उस वक्त ये चीखने लग गए। तो याद रखिए, अगर आप किसी की बात सुनकर नहीं मानते तो फिर बाद में अल्लाह को तो मनवाना आता ही है। तो जब वक्त हो पढ़ने का उस वक्त सोए रहें, तो रिजल्ट के वक्त चीखो पुकार करें तो फायदा नहीं होगा। यही इधर समझाया जा रहा है। और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया और कहने लगे, ये तो जादूगर और झूठा है, क्या इसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये बात बड़ी ही अजीब है। कल भी यही था आज भी। देखिए, ये वो आयतें जो मैंने पीछे आपसे जिक्र किया था कि सूरत स्वात में आपको बॉडी एक्शंस दिखाए गए हैं उन कुफार के। अल्लाह के नबी के खानदान के ही लोग थे कुछ मक्का में, लेकिन बाप दादा के नाम पे शिर्क में ऐसे हो चुके कि जब अल्लाह के नबी ने दावत पे बुलाया और उसके बाद उनको दीन की दावत दी तो क्या कहने लगे, ये देखिएगा। दोबारा सुनिए आयत 4 से। और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया और कहने लगे, ये तो झूठा जादूगर है, क्या इसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये बहुत बड़ी अजीब बात है। कहते थे, इतनों से मांगते हैं फिर भी बेटा मांगते हैं तो बेटी होती है, और तुम कह रहे हो कि इतनों को छोड़कर बस एक से मांगो। हालांकि ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। याद रखिए, दर दर का भिखारी रात को भूखा ही घर आएगा। एक दर के बन जाइए, अल्लाह ही देगा, औलाद भी वही देगा, माल भी वही देगा। ये बात समझ नहीं आती दर दर के भिखारियों को। इनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में तो कोई गरज है। देखिए, आपको कोई ये बातें कहे, ये आप जो पढ़ा रहे हैं ना किसी गरज से करें, आपका अपना कोई फायदा? और दाल में तो कुछ काला है, कैसा हमारा दिल टूटेगा? लेकिन अल्लाह के नबियों के दिल टूटते थे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत फिर उनको जोड़ देती थी। हमने तो ये बात पिछले दिन में भी नहीं सुनी। ये बहुत बड़ा स्टबननेस का जुमला है जो हर दौर के लोग बोलते हैं कि क्या हमारे पहले गलत थे? कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मन घड़त है। क्या हम सब में से इसी पर कलाम इलाही नाजिल किया गया? यानी कि आप दीन इन्हीं को समझ आया, पहले लोग ठीक नहीं थे? दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से शक में हैं, बल्कि सही ये है कि इन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा ही नहीं। या क्या इनके पास तेरे बड़े जबरदस्त फैयाज रब की रहमत के खजाने, यानी उसने बेटे किसी को दे दिए कि तुम बांटते फिरो, और बेटियां किसी और को दे दी, और दौलत की देवी किसी और को बना दिया? कैसी नामुमकिन बात है जो ये अपने लिए सोचते हैं। या क्या आसमानों जमीन में इनके दरमियान की हर चीज की बादशाहत इन्हीं की है? तो फिर ये रस्सियां तान कर चढ़ जाएं, ये भी बड़े बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ छोटा सा लश्कर है। इनसे पहले भी कौमे नूह और आद और मेखों वाले फिरौन ने झुटलाया, और समूत ने और कौमे लूत ने और रेका के रहने वालों ने भी, यही बड़े लश्कर थे। इनमें से एक भी ऐसा न था जिसने रसूलों को नहीं झुटलाया। बस मेरी सजा इन पर साबित हो गई। ऐसे लग रहा है ना कि एक चैलेंजिंग स्टाइल है इन आयात का। किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? जिद में आ गए, स्टबननेस में आ गए, तुमने गुनाहों को लाइफस्टाइल बना लिया। तुम्हें दीन पे जमना मुश्किल लगा तो याद रखो, शर्तें लगा लगा कर आने वाले दीन में जमते नहीं है। आज भी अगर आप और मैं शरायत के साथ दीन में आएंगे या दीन का कोई काम करेंगे ना, तो समझ लीजिए कि अगले ही लम्हे हम उसमें से हट भी जाएंगे, क्योंकि शरायत पूरी नहीं होती। अगर शौहर बीवी का रिश्ता शरायत पे हो ना, तो कई दफा तलाक हो जाए एक साल में। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, बिलॉस होकर दीन का काम करने वाला बना दे। ये कहिए, मैंने हर हालात में, मैंने हर किस्म की जगह पे करना है। वरना ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हुए यहाँ दिख रहे हैं, आप देखिए कि उनका अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ताला आयत 15 में फरमाते हैं, वमा यंजुरु हाउला इल्ला सैहतन वाहिदा, इन्हें सिर्फ एक चीख का इंतजार है जिसमें कोई तौकुफ और ढील नहीं। यानी जब आएगी तो कंटिन्यूसली आवाज आती जाएगी। और उन्होंने कहा है, हमारे रब, हमारी सरे नविश, तू हमें रोजे हिसाब से पहले ही दे दे, या ना हमसे इंतजार नहीं होता अपना रिजल्ट देखने का, दुनिया में ही बता दे। आप इनकी बातों पर सब्र करें। यकीन कीजिए, स्टबन रवैये जो अल्लाह के नबियों को सहने पड़ते थे दीन के काम में। हम तो छोटी सी छोटी बात पे नाराज होकर बैठ जाते हैं ना, वो नहीं नाराज होते थे। और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करें, जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को इसके ताबे कर रखा था कि इसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह खानी करें। अल्लाह अकबर। अव्वाब की खूबियां देखिएगा। हजरत दाऊद के साथ ही लफ्ज अव्वाब आता है। इतनी दौलत माल होने के बावजूद बार बार बंदे को अल्लाह की तरफ आना पड़े तो वही अव्वाब होता है। दूसरा कोई कहता है, मैं खुद ही ले लूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। नहीं, अव्वाबीन कौन होते हैं? अल्लाह से रजू करते हैं। خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھولتے، مصیبتوں میں شکوے نہیں کرتے، آزمائش میں صبر اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور کسی اور کے در کے آگے نہیں جھکتے. اللہ آپ کو مجھے بھی اواب بنا دے. حضرت داؤد علیہ السلام کی صفات جو ہمیں یہاں ملتی ہیں، صاحب فراست بھی تھے اور اواب بھی تھے. آیت 17 ہے سورت سواد کی. پہاڑ ان کے لیے مسخر تھے، چرند برند کی بولیاں سمجھتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام حکیم اور دانا تھے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شخصیت پرستی کے فتنے سے نکال کر انبیاء کرام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. دیکھیے، اگر پلو پکڑنا ہوتا تو کسی نبی کا پکڑتے، وہ زیادہ سیکیور ہوتے کہ وہ لوگ ہوتے جو اپنی جیسے انسانوں کے ساتھ ایسے معاملے کریں. کچھ اور خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی ہوئی تھی، ان کا تذکرہ دیکھیے گا آیت 19 میں. وَالطَّيْرَ مَخْشُورَةٌ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ. اور پرندے بھی جمع ہو کر سب کے سب ان کے زیر فرمان رہتے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور انہیں حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا. اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر بھی ملی جبکہ وہ دیوار پھان کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے، پس چین سے ڈر گئے اور انہوں نے کہا، خوف نہ کیجئے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور نہ انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں سیدھی راہ بتلائیے. سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی یعنی شیپ، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھ کو ہی دے دو، اور مجھ پر بات کرنے میں بڑی سختی برتتا ہے، یعنی زبان کا بھی سخت ہے، اس کا انداز جو ہے وہ کمانڈنگ ہے. آپ نے فرمایا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے. اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. شراکت کی باتیں ہو رہی ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آسمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح ہی رجوع کیا. اواب ایسے ہی ہوتے ہیں. پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. حضرت داؤد کا یہ تذکرہ جو یہاں آیا ہے، بنی اسرائیلی روایات میں بہت کردار کشی کی گئی حضرت داؤد کی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم مسلمانوں میں بھی کسی حد تک یہ غلط سوچ پہنچ گئی کہ نعوذ باللہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، پھر ان کو ایک جرنیل کی بیوی اچھی لگی، پھر انہوں نے کہا میں اس سے بھی شادی کر لوں، اور اس کو پھر بھیج دیا بارڈرز پہ کہ وہاں یہ شہید ہو جائے گا تو میں اس کی بیوی سے شادی کروں گا. یاد رکھیے، اللہ کے نبی ان ساری چیزوں سے مبرہ ہے. ایک واقعہ تھا، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کو بلا کر کچھ چیزیں سکھائیں، اس کو ہدایت بیانی کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص واقعہ تھا کہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی فراست اور ان کی سمجھ کا ذکر کیا گیا. آگے مقصد حیات. لیکن جب لوگ شخصیات میں کھو جاتے ہیں تو وہ مقصد حیات بھی بھولنے لگتے ہیں. فرمایا، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کفار کا ہے، پس کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کرتے رہیں گے؟ جی، ذالک ظن الذین کفروا. یہ کہاں ہے؟ آج بھی آپ کمپیریٹو ریلیجن میں جا کر پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی. کیونکہ انہوں نے ایک خاص تہوار بنایا ہوا جس کا نام وہ رام کی لیلا رکھتے ہیں، اور اسی طرح کی کچھ کہانی ہے کہ رام کا جب کھیلنے کو دل کیا تو اس نے دنیا بنائی، اپنے میل سے اپنی بیوی بنائی، پھر دونوں کھیلتے رہے، اور جب ختم کرنا ہوگا تو اس کو ختم کرے گا. ہم تو یہ نہیں کہتے، لیکن اللہ کہتے ذالک ظن الذین کفروا. تو کیا پتہ چلا کہ اپنے بچوں کو فکشن کے نام پہ، فن کے نام پہ، موویز کے نام پہ بھی اگر غیروں کا دین سکھاتے اور دکھاتے ہیں تو کم از کم اپنا دین تو دکھائیے. ایسی یہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا دو مختلف زندگیاں گزارنے والے ایک ہی جنت میں جائیں گے؟ نہیں. تو پھر کیا کریں؟ ایک سوال، اس کا جواب فوراً سامنے آتا ہے. کتاب انزلنا الیک مبارک. یہ ببرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. جن نسلوں کے ہاتھ میں آپ یہ قرآن دے دیں گے نا، انشاءاللہ وہ شخصیات میں نہیں کھوئیں گی، वो ग्लैमर वाले, रंग रौनक वाले, फूल मोतियों वाले दीन को नहीं अपनाएंगी। आज हमने फिल्मों के जरिए तो दूसरों का दीन सिखा दिया, और अपना दीन भी जो सीखा तो वो फिल्मों से ही सीखा। अल्लाह हमें समझ कर बैठ कर पढ़ने वाला बना दे। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान नामी फर्जंद अता फरमाया, जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रजू करने वाला था, जैसा बाप वैसा बेटा। जब इनके सामने शाम के वक्त तेज रोग घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे, मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफ्ताब छुप गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ, फिर तो पिंडलियां और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। हम भी सोचे हमें अपनी किसी चीज में पढ़कर नमाजें तो नहीं भूल जाती, कोई गैजेट, कोई मशीन, कोई टिकटॉक, कुछ। हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और इनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया। फिर इसने रजू किया, कहे, मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो, तो बड़ा ही देने वाला है। बस हमने हवा को इनके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी। क्या साइंसी तरक्की थी उस दौर में। अल्लाह ने आजमाइश की, इतना बड़ा नबी है लेकिन अल्लाह औलाद ना देना चाहे तो ना दे। बुखारी की रिवायत से पता चलता है कि हजरत सुलेमान औलाद की नेमत से महरूम थे, उसका जिक्र है इसमें। फिर आप देखिए कि जिन्नात की बातें हो रही हैं, और ताकतवर जिन्नात को भी इनके मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को, और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते। ये है हमारा दिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। यानी अल्लाह ने हजरत सुलेमान की दुआ कबूल कर ली। इनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब है और बड़ा अच्छा ठिकाना है। और हमारे बंदे अय्यूब का भी तस्करा करो, जब कि इसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुख पहुंचाया है। एक एक चुने हुए बंदे का जिक्र हो रहा है कुरान में, कि इन्होंने किसको पुकारा, किससे मांगा और कौन थे वो। अल्लाह हमें इन्हीं की शख्सियात से सबक लेने वाला बना दे। अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा और पीने का पानी है, और हमने इसे इसका पूरा कुंबा अता फरमाया, बल्कि इतना ही और भी इनके साथ अपनी खास रहमत से। और अकलमंदों के लिए नसीहत है, किसी दर पे नहीं गए थे यो, वहीं बैठे रहे, सब्र शुक्र की तस्वीर बने रहे। अल्लाह ने औलाद भी वापस की, जवानी भी दी, आसमान से सोने की टिड्डियां बरसाई। वल्लाही जो तौहीद पे जम जाते हैं और मुसीबतों दुखों की बाढ़ से गुजरते गुजरते अपना ईमान बचा के ले आते हैं, अल्लाह उनके सताज भी यही करता है। सब जो लिया होता है वापस देता है, एक कसम खाई थी उसकी तरफ इशारा। और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा यानी झाड़ू लेकर मार दे और कसम के खिलाफ ना कर। सच तो यह है कि हमने इसे बड़ा साबिर बंदा पाया, वो बड़ा नेक बंदा था और बड़ी ही रग़बत करने वाला था। मिसाल ये कि अम्बिया किराम पे खुशियां भी आईं और गम भी आए, बीमारियां भी आईं, लेकिन वो किसी दर पे नहीं झुके अल्लाह के दर पे झुकने के सिवा। हमारे बंदों इब्राहिम, इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम का भी लोगों से जिक्र करो जो हाथों और आंखों वाले थे, यानी सही इस्तेमाल करते थे इन नेमतों का। हमने इन्हें खास बात यानी आखरत की याद के साथ मखसूस कर दिया था। इसको हाईलाइट कीजिए, ये चाहिए आज मुझे आपको। इल्मे आखरत को फिक्रे आखरत में ढालना है, फिर हमारी नस्लें इंशाल्लाह बचेंगी और उनकी हिफाजत भी होगी। जिक्रद्दार, इन्ना खलसनाहुम बिखालिसते जिक्रद्दार। ये सब हमारे नजदीक बरगजीदा और बेहतरीन लोग थे, चोजन मन। इस्माइल, यसा और जुल्किफल का भी जिक्र कीजिए अलैहिस्सलाम। ये सब बेहतरीन लोग थे। इन शख्सियात को क्यों नहीं लोग पूछते? कभी आपने देखा इनके भी कोई है नाम के साथ कोई जगह बनी हुई? नहीं। ये नसीहत और यकीन मानो के परहेजगारों की बड़ी अच्छी जगह है। कौन सी? यानी हमेशगी की जन्नतें, जिनके दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं, जिनमें बाफरागत तकिया लगाए बैठे हुए तरह तरह के मेवे और किस्म किस्म की शराबों की फरमाइशें कर रहे हैं, और इनके पास नीची नजरों वाली हम उम्र हो रहे हैं। ये नीची नजरें क्या हैं? बाहया औरतें। ये है जिसका वादा तुमसे हिसाब के दिन के लिए किया जाता था। क्या वो मंजर होगा जब जन्नत में जाएंगे और ये सारे नबी और रसूल भी वहां होंगे? अल्लाह हमें इनका साथ नसीब कर दे। बेशक रोजियां हमारा दिया हैं, जिनका कभी खात्मा नहीं, यानी खत्म नहीं होंगे, एंडलेस सप्लाई। जितना मर्जी खाओ, कोई मोटे होने का खौफ नहीं, खदशा नहीं, फिक्र नहीं। हम खा भी लें तो परेशान और दूसरी तरफ भी परेशान। तो दुनिया जन्नत नहीं, जन्नत तो वहां मिलेगी। ये तो हुई जैसा, याद रखो कि सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है, दोजख है जिसमें वो जाएंगे। आह क्या ही बुरा बिछोना है। ये है बस इसे चखें, गरम पानी और पीप और इसके अलावा और तरह तरह के अज़ाब। ये कौम है जो तुम्हारे साथ आग में जाने वाली है, इन्हें खुशी और कुशादगी ना हो, यही तो जहन्नुम में जाने वाले हैं। ला मरहबा बिहिम, कैसा अनवेलकमिंग स्टाइल है, कोई खुशी नहीं हुई आपको देखकर। कोई ये जुमला बोले आपको कितनी शर्म आएगी उसके घर जाकर, काय का कुछ नहीं मिला, यही तो जहन्नुम में जाने वाले हैं। वो कहेंगे बल्कि तुम ही तो हो जिनके लिए कोई खुश आमदीद नहीं, तुम ही ने तो इसे पहले ही से हमारे सामने ला रखा था, बस रहने की बड़ी बुरी जगह। फिर देखिए वहां वही झगड़े हैं जिनकी मुरीदी करते रहे, जिनके ऊपर नजरें थी, वहां जाकर देख रहे हैं कि अल्लाह अकबर, एक दूसरे को देखकर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ जहाँ शख्सियत परस्ती आ जाती है, वहां समझ लीजिए कि दिलों से सच्ची मोहब्बत भी निकल जाती है। वो कहेंगे हमारे रब जिसने कुफर की रस्म हमारे लिए पहले से निकाली हो, इसके हक में जहन्नुम की दुगनी सजा कर दे। और जहन्नमी कहेंगे क्या बात है कि वो लोग हमें दिखाई नहीं देते जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे, क्या हमने इनका मजाक बना रखा था या हमारी निगाहें इनसे हट गई हैं। यकीन जानो कि दोस्तियों का ये झगड़ा जरूर ही होगा। समझ आ रहा है आपको सिनेरियो? वो किधर गए जिनको हम बहुत हद से बड़ा हुआ कहते थे और गुस्ताख कहते थे, आज जब जरा सी इस मौजू पे बात करें लोग कहेंगे आप गुस्ताख हैं, तो वहां जाकर कहेंगे वो किधर गए जिनको हम कहते थे असल में तो भटके हुए ये हैं। यकीन जानो कि दोस्तियों का ये झगड़ा जरूर ही होगा। यहाँ एक और चीज नोट कर लें कि दोजख में जहन्नुम में झगड़े भी बहुत सारे होंगे, और झगड़ा अपनी जगह एक अजाब है, घरों में झगड़े आ जाएं तो घर जहन्नुम बनने लगते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम आज शायद 64 में, रोजे क्यामत पैरोकारों का अपने लीडरान के साथ रवैया। देखिए कुरान सुन्नत के साथ जुड़े हों अगर तो बहुत अच्छे हैं लीडर, उन्हीं को तो मानेंगे, वही तो हैं सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह ताला ने वो रास्ता मांगना सिखाया जिस पे नेक लोग गए, तो आप भी इंशाल्लाह उस रास्ते पे चलेंगे तो आप भी वहीं पहुंचेंगे जहां वो होंगे। लेकिन जब लोग शख्सियात के पीछे खोते हैं तो क्या होता है? पहली बात देखिए कि शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बुत तो दिख रहा है, अकल वाले कह भी रहे हैं कि कुछ नहीं करता, पर शख्सियात तो बहुत करता धरता दिखती हैं, बड़े बड़े उनके दावे और अपने नाम के साथ सबके लाके होते हैं। फिर आप देखिए लीडरान का दोगलापन होता है, अंधाधुंध तकलीक क्यों करें कि जब वो बातें कहें कुछ और उनका अपना अमल कुछ और बताएं। एक सिस्टर ने एक मौके पर शेयर किया कि कोई बुजुर्ग थे उनकी सास के, एक मौके पर रमजान में घर में आ गए किसी बच्ची के इलाज के लिए। अब अंदर ट्रॉलियों में खाने पानी चाय पानी जा रहे हैं, ये नई नई बहू थी उस घर की, कहने की कौन आया? वह कहने लगी पीर साहब आए हैं फलां बच्ची का जो इलाज करेंगे जिसको पता नहीं दौरे पड़े हुए हैं। कहा ये खाने किसके जा रहे हैं? पीर साहब के। क्यों? पीर साहब रोजा नहीं रखते। क्यों भाई? उनको शुगर है तो अपना इलाज क्यों नहीं करते? अल्लाह अकबर कबीरा। और कई पीरों की तो नमाजें भी लोगों के जुम्म में माफ है। अल्लाह के नबी तो आखिरी दिन तक असलात वमा मलकत ईमानुकुम कहते गए, और आज लोगों की दुनिया में माफ हो चुकी हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। याद रखिए शख्सियत परस्ती और खुशामदाना कल्चर साथ साथ चलता है, क्या करें, झुक जाइए। इबादत सिर्फ अल्लाह की करिए, झुकने वालों ने इज्जतें पाई हैं। खुद ही वाले रहे खुद ही खुदी करते, यानी अपना नाम लेने वाले अपना नाम लेते रहे, अल्लाह का नाम लेने वाले बुलंद हो गए। ताज देखिए नया दीन नए फिरके, तबलीग के बहाने बाज दफा जवान बच्चे बच्चियों को इकट्ठा कर दिया जाता है, और नाम नहीं लेना चाहती लेकिन एक ऐसा नाम है जिसमें बस कुछ राग रंग गा लीजिए, कुछ आप नशीद पढ़िए और लोगों की पसंद के फतवे, और नाम नेहाद दीन फैलाइए, शरीयत इस्लाम में अपनी मर्जी की बातें पेश कीजिए, शोहरत पाइए, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ने आपका क्लिक देखा, बस खत्म। अल्लाह ताला आपको मुझे इस शोहरत के फितने से बचाए। आयत 65, कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ सिवाय अल्लाह गालिब के जो वाहिद है, और कोई लायक इबादत नहीं, जो परवरदिगार आसमानों और जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, वो बड़ा जबरदस्त बख्शने वाला है। आप कह दीजिए ये बहुत बड़ी खबर है जिससे तुम बेपरवाह हो रहे हो। वाकई ये बहुत बड़ी खबर है, हमें भी इस पे कान लगाने हैं। मुझे इन बुलंद कदर फरिश्तों की बातचीत का कुछ इल्म ही नहीं, जबकि वो तकरार कर रहे थे मेरी तरफ फक्त यही वही की जाती है, मैं तो साफ साफ आगाह कर देने वाला हूँ। जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, सो जब मैं इसे ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया, इसने तकबर किया और वो था ही काफिरों में से। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्लीस तुझे इसे सजदा करने से किस चीज ने रोका? जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया, क्या तू कुछ घमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से है? इसने जवाब दिया, ना खैर मिन हो, हाईलाइट कीजिए, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से बनाया, अकल इस्तेमाल की अल्लाह के हुक्म के मुकाबले पे, इरशाद हुआ तू यहां से निकल जा, तू मरदूत हुआ और तुझ पर कयामत के रोज तक मेरी लानत और फटकार पड़ेगी। कहने लगा, मेरे रब मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन तक मोहलत दे दे। जरा इबलीस के भी दुआ मांगने के तरीके को देख लीजिए, आयत का नंबर नोट कर लें, रब्बी फानजिरनी इला यौमी योबासून, आयत 79 अगर आप नोट कर रहे हैं तो। देखिए रब कह रहे हैं, मानता है ना कि रब अल्लाह दुआएं सुनता है, अल्लाह से ही मांग रहा है, किसी और से नहीं मांग रहा, मोहलत भी मांग रहा है, उसको ये भी पता है कि मोहलत भी अल्लाह ही देते हैं और क्यामत के दिन का भी एतबार है और दोबारा जी उठने का भी सब कुछ है। इतने नेकी के दावे करने के बावजूद जहन्नुम में क्यों जाएगा? तो यहाँ सोचने का नुक्ता है, बाद में सोचिएगा। क्या आप कहते हैं आखिर वो भी तो दाढ़ी रखते हैं, वो भी नमाजें पढ़ते हैं, वो भी रोजे रखते हैं, गलत अकीदे के साथ बहुत बड़ी बड़ी इबादात भी कल क्यामत के दिन जाया होंगी। इबलीस इसकी मुंह बोलती तस्वीर है। इला यौमिल वक्तिल मालूम, मुतय्यन वक्त के दिन तक, कहने लगा फिर तो तेरी इज्जत की कसम मैं इन सबको यकीनन बहका दूंगा सिवाय तेरे इन बंदों के जो चुने हुए और पसंदीदा हों। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, आपको इस सूरत में मुखलस का फर्क मुखलिस से तो आ ही गया। आप कोशिशों में लग जाइए ताकि एक दिन आवाज आ जाए कि मैंने आपको भी चुन लिया। फरमाया, सच तो यह है कि मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से जहन्नम को भर दूंगा। कह दीजिए मैं तुमसे इस पर कोई बदला तलब नहीं करता और न मैं तकल्लुफ करने वालों में से हूँ। दीन में भी तकल्लुफ पसंदीदा नहीं है, बहुत तकल्लुफाना बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत बना संवार कर मुकफ़ा व मुसज्जा तकरीरें तबलीगें भी लोगों को बाज़ दफ़ा आपका गर्विदा बना देंगी, अल्लाह के नहीं रहते आप। कहते हैं कि आप बात करते हैं, हमें मज़ा बड़ा आता है, क्या फ़ायदा मज़ा लेने, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, कोई खाने का प्रोग्राम है जिसमें मज़ा आए, तो याद रखिए दीन की बात सुनने में मज़ा आए कि ना आए फिर भी उसको लेना है, क्योंकि अल्हक को मुरद्दबा कड़वी है कि मीठी खानी तो है। तो जो हिदायत के लिए कुरान को पढ़ते हैं वो फिर स्टाइल पे ज़्यादा बात नहीं करते। ये तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत और इबरत है, यकीनन तुम इसकी हकीकत को कुछ ही वक्त के बाद सही तौर पर जान लोगे। कोई बात नहीं, थोड़ी तो दिन की बात है, लग पता जाएगा। तो सूरत स्वाद पूरी हुई इस पैगाम पे कि शैतान के वार बड़े सख्त हैं। एक तरफ नफ्स परस्त और शख्सियत परस्त इंसान पे जब शैतान का वार होता है बहुत जोरदार होता है, उस पे असर भी करता है शैतान का वार, गुमराही और शिर्क में उसको मुबतला भी कर देता है और बिलाखिर उसको जहन्नुम का हकदार बना देगा। इसके बरक्स मुखलसीन पर शैतान का वार बेअसर और वो जन्नत के हकदार हैं। तो पहले के मामले में शैतान कामयाब, दूसरे के मामले में नाकाम। पूरी सूरत स्वाद से जो चंद बातें सीखी उसको दोहरा लीजिए। मुशरिकीन का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताज्जुब था, क्या एक कर देते हैं सारे खुदाओं को, कहते हैं सबको छोड़ो एक को मानो। फिर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की दुनिया में, ये कायनात खेल तमाशे के लिए नहीं बनी, हज़रत दाऊद के जिक्र से पहले हमने पढ़ा। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनका सब्र देखा और अल्लाह ने उन पर सोने की टिड्डियां बरसाई, बुखारी की रिवायत है, और अय्यूब दोनों हाथों से थामने लगे, जमा कर रहे, कहा सब्र क्यों भाई, कहा ये मेरे अल्लाह का इनाम है, और यकीन है जब अल्लाह देता है ऐसे ही छप्पर फाड़ के देता है, आपका दामन छोटा होने लगता है, चीज़ें बाहर गिर गिर पड़ती हैं अल्लाह की रहमतों वाली, सब्र करके तो देखिए। इसी तरह सालेहीन का जर अल्लाह ज़ाया नहीं करता, और आखिर में फिर हमने तख्लीक आदम और इबलीस की सरकशी में से अपने लिए सबक दिए। आगे है सूरत जुमर, थोड़ा सा हिस्सा इधर है, बाकी अगले पारे में खूबसूरत तरीन सूरतों में से एक सूरत है, ख़ास तौर पर इसकी आखिरी आयतों पर जब पहुँचेंगे तो हम इसको नोट करेंगे। और जुमर कहते हैं गिरोह को, ट्रूप को, क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम में जाने वालों के अलग गिरोह होंगे। 39 नंबर की सूरह, 75 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक्की फअबुदिल्लाह मुख़लिसल लहुद्दीन। देखिएगा ये आपको मुझे कैसे खालिस होना सिखाएगी। इस किताब का उतरना अल्लाह ग़ालिब हिकमत की तरफ से है, यकीनन हमने इस किताब को आपकी तरफ हक के साथ नाजिल फरमाया, बस आप अल्लाह ही की इबादत करें इसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। खबरदार, अल्लाह ताला के लिए खालिस इबादत करने और जिन लोगों ने इसके सिवा औलिया बना रखे हैं, नोट करिएगा शख्सियात को, اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں گے. یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا. جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا. یہ آیت 3 ہائی لائٹ کریے, اس کی بعد میں ضرور ڈیٹیل سے تفسیر سنیے. آپ کو اس میں کم از کم ایک جملہ تو مل گیا جو ہر جگہ لوگ بولتے ہیں جو کسی بھی انسان کا پلو تھامے ہوئے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ان کے پاس کیوں بیٹھے ہیں, ان کی قبر پہ کیوں ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمِ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, ہم ان کی عبادت اور کسی وجہ سے نہیں کرتے سوائے اس کے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. اور باتیں کیا لوگ کرتے ہیں؟ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہماری سیڑھیاں ہیں. اور اسی طرح سے بادشاہ کے پاس اس کے درباری ہوتے ہیں, ہر ایک تو بادشاہ پہ نہیں پہنچتا, تو ہر بادشاہ کہتا بھی تو نہیں ہے نا کہ اتنی قریب. تو یاد رکھیے, دوستیوں کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کہ کسی مشرق سے آپ کی دوستی ہو جائے. سورت زمر آیت 3 آپ کو مجھے کیا دکھاتی ہے؟ اولیاء, جس کو لوگ پیر, فقیر, بزرگ کا نام دیتے ہیں اور ان کا قرب پاتے ہیں, کیا سوچ کے کہ وسیلہ ہوگا اللہ کے لیے. اللہ کے قرب کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں, یا ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ آپ ہمیں قریب کریں گے. تو یہ شخصیت پرستی اور شرک میں مبتلا کرتے ہیں. دن بہ دن ایسے لوگ خالق سے دور ہوں گے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو برے دوست ہوتے ہیں نا, تو وہ بری صحبت, برے کام, فسق و فجور, لہو و لعب اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہوں, تو مجھے کیوں بتاتے ہو وہ باتیں جو کہ کسی کو بھی نہیں پتا. لو اراد اللہ یتخذ ولدا, لوگ اکثر اولادیں لینے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چن لیتا. یعنی تمہیں کہنے کی ضرورت تھوڑی تھی کہ اللہ فرشتوں کو بیٹیاں بنائے یا عیسیٰ کو بیٹا بنائے, میں اپنی چوائس سے لیتا. تمہیں تو میری چوائس سے اولاد ملتی ہے نا, تو میں تو اپنی چوائس سے بھی لے سکتا تھا, لیکن وہ تو پاک ہے, وہ اللہ ہے, یگانہ قوت والا, نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا, اور وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے, اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے, ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے کہ جو کائنات کا اتنا نظام چلا رہا ہے. کیا وہ تمہیں بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتا؟ اور تمہاری اولادیں کہاں اتنی فرما بردار ہیں جتنے سورج چاند اللہ کے فرما بردار ہیں؟ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا, کس قبر پہ جا کر اولاد مانگی تھی آدم نے, یا بیوی مانگی تھی آدم نے؟ جب رب نے ان کو دے دیا تو آپ کو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چپایوں میں سے 8 نر مادہ اتارے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے. یہ ماں کے پیٹ میں کس کا حکم چلتا ہے؟ تین تین اندھیروں میں. یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے, اس کے لیے بادشاہت ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, مگر پھر تم کہاں بہک رہے ہو. نہیں اچھا ادھر سے نہیں ملا, میں آپ کو ٹھٹھا لے جاؤں گا. اچھا ادھر سے نہیں ملا, چلے آئیں ذرا آپ کو میں لال شہباز کے در پہ لے جاؤں. یعنی در در پہ لوگ پھرتے ہیں. یاد رکھیے یہ انسانیت کی توہین ہے. اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے, وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں, اور اگر تم شکر کرو گے تو اسے تمہارے لیے پسند کرے گا, اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کا لوٹنا رب کی طرف ہے, تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے, یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے. اور انسان کتنا تھوڑ دل ہے, اور شرک ہوتے ہی عموماً یا بہت دکھ میں یا بہت خوشیوں میں. انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع کر کے اپنے رب کو پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو, آخر تم دوزخیوں میں سے ہونے والے ہو. کیا فائدہ اگر دنیا میں کچھ مل بھی گیا شرک کر کے, تو کل تو جہنم ہے. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت یعنی عبادت میں گزارتا ہو, آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو, اللہ ہمیں ایسوں میں کر دے. اور جو اس کے برعکس وہ برابر ہو سکتے ہیں, بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو اپنے رب کی طرف سے, اللہ میں بھی عقل مند بنا دے. کہہ دو کہ میرے ایمان والے بندو, اپنے رب سے ڈرتے رہو, جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے, صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. یعنی شرک سے ہجرت کر لو توحید کی طرف, ऐसे माहौल को छोड़ दो जो तुम्हें शिर्क पे मजबूर करे। तो हमसे क्या मतलूब है आयत 10 के जरिए? कुरान करीम का इल्म लेकर हक से रोशनास हों, खुद भी कुरान का इल्म लीजिए, फिर आम इंसानों की बजाय अम्बिया कराम को रोल मॉडल बनाएं, लेकिन शख्सियात उनकी भी नहीं पूजी जाएंगी। और दुनिया की बेसुबाती को जानते हुए मकसद हयात पे नजरे लगाइए तो इंशाल्लाह जिंदगी का मकसद हासिल होगा। आयत 11, आप कह दीजिए मुझे हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करूं कि इसी के लिए इबादत को खालिस कर लूं, और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बन जाऊं। कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अजाब का खौफ लगता है। ये जुमला याद कीजिए, जब कभी आपको कोई शिर्क या बिदत या किसी भी गलत काम की तरफ बुलाए तो ये आयत सुना दीजिए जवाब में। कह दीजिए मैं तो खालिस करके सिर्फ अपने रब की इबादत करता हूँ, तुम इसके सिवा जिसकी चाहो इबादत करते रहो। कह दीजिए कि हकीकी नुकसान पाने वाले वो हैं जो अपने आप को और अपने अहल को क्यामत के दिन नुकसान में डाल देंगे। याद रखो कि खुल्लम खुल्ला नुकसान यही है। देख लीजिए, खुद तो डूबेंगे, दूसरों को भी ले डूबोएंगे अपनी जहालत की वजह से। इन्हें नीचे ऊपर से आग के शोले मिसल साहिबान के ढांप रहे होंगे। यही अजाब है जिनसे अल्लाह अपने बंदों को डरा रहा है। बार बार लफ्ज़ इबाद आ रहा है सूरत ज़ुमर में। ऐ मेरे बंदो, बस मुझसे डरते रहो, और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से परहेज किया और हमातन अल्लाह तला की तरफ मुतवज्जे रहे, वो खुशखबरी के मुस्तहिक हैं। मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये मेरे बंदे या तो अल्लाह बहुत प्यार में इस्तेमाल करते हैं या बहुत गुस्से में, या दोनों चीजें हैं। तो क्या पता चला? तागूत से मुराद हर वो ताकत और शख्सियत, वो बुत, वो शैतान, कानून, माहौल, मुआशरा, रस्म और रिवाज है जो इंसान को अल्लाह के रास्ते से और अहकामात से हटा दे और शरीयत के मुकाबले में अपनी इताअत की तरफ माइल करे। तागूत की बंदगी से इज्तनाब करने वाले ही उलुल अलबाब है। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को उलुल अलबाब बना दे। सही रिवायत है सिलसिला सहीहा की 2571, अबू हुरैरा रावी हैं, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के साथ बैठे हुए थे कि अचानक पहाड़ी रास्ते से एक नौजवान आते हुए दिखाई दिया। जब हमने इसको देखा तो कहा, काश ये नौजवान अपने शबाब और नशात और कुव्वत और ताकत को अल्लाह की राह में वक्फ कर देता, यानी दुआ दी। जब अल्लाह के नबी ने हमारी बात सुनी तो फरमाया कि अल्लाह की राह में वही है जो शहीद कर दिया जाए। जिसने अपने वालदैन के लिए मेहनत की वो भी अल्लाह की राह में है, जिसने अपने अहल याल के लिए मेहनत की वो भी अल्लाह की राह में है, जिसने अपने आप को पाक दामन रखने के लिए तगोदो की वो भी अल्लाह की राह में है, हाँ जिसने माल ज्यादा इकट्ठा करने के लिए मेहनत की वो शैतान और इसके मुताबिक तागूत की राह में है। तो कितनी प्यारी रिवायत है, तागूत से हटकर हर खैर का रास्ता इंशाल्लाह आपको अल्लाह का पसंदीदा बनाएगा और मौत शहादत की आएगी। तो शख्सियत परस्त जो है ये तागूत के राह में है, और शख्सियत परस्ती गुमराही का रास्ता है। इसमें गलुफ भी है, दीन से दूरी भी है, शख्सियत परस्ती भी है, इतेदाल की राह से हटना भी है और अंधी तकलीद भी है। तो पारे कैंट पे इस सबक को रिवाइज कीजिए कि हमने सिर्फ एक अल्लाह का होके जीना है, क्योंकि शख्सियत परस्ती शिर्क की इब्तदाई सीढ़ी है। इस्लाम शख्सियत परस्ती का मजहब नहीं। शख्सियत परस्ती एक मनफी रवैया है। शख्सियत परस्ती यहूद और नसारा का फेल था और आज भी है। शख्सियत परस्ती गलुफ के रास्ते शिर्क तक ले जाती है, और शख्सियत परस्ती से इंसाफ और हक के रास्ते से एक इंसान हट जाता है। और तारीख में शख्सियत परस्ती की मिसाल अगर आप देखें तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो का दौर था। लोगों के जहन में ये गुमान आ गया कि जिस जंग में खालिद बिन वलीद होते हैं उधर फतह होती है। फौरन हजरत उमर ने उनको सिपा सलार के ओहदे से हटाया और अबू उबैदा बिन जराह जो एक बूढ़े सहाबी थे उनको मुकर्रर किया, ताकि लोगों को ये यकीन आ जाए कि फतह अल्लाह के हुक्म से होती है, किसी इंसान से नहीं। ये थी हजरत उमर की हिकमत। अल्लाह ताला आपको मुझे बचाए। नुकसानात भी नोट कीजिएगा। शख्सियत परस्ती के नुकसानात क्या हैं? पहली बात है कि फितना और फसाद फैलता है दुनिया में और अल्लाह की नाराजगी मिलती है। गलूफ और शख्सियत परस्ती साथ साथ चलती है। जज्बातियत और शिद्दत और इंतहा परस्ती आती है दुनिया में। तनकीद पर सब्र और बर्दाश्त की कमी हो जाती है। फिर लोग अंधी तकलीद शुरू करते हैं। और फिरका परस्ती भी आज असल में शख्सियत परस्ती का दूसरा नाम है। लिखिए जुमला, फिरका परस्ती असल में शख्सियत परस्ती है। हर फिरके ने अपनी पसंद की एक शख्सियत को लिया और उसको लेके चल पड़ा। उम्मत का जवाल, और आज देखिए जितने लीडर उतने फिरके, उतनी जमाते उतने गिरोह इतने नाम। तो दुश्मनों का गालिब आना ऐसी कौम पे लाजिम है। अल्लाह आपको मुझे हर लिहाज से ऐसी गंदी चीजों से बचा के रखे। करना क्या है हमसे मतलूब? अकीदे को दुरुस्त रखिए, कुरान सुन्नत अहादीस और शरीयत को सबसे ज्यादा अहमियत दीजिए, एतदाल की राह इख्तियार करनी है, और अच्छी शख्सियत की अच्छी बातों को लेना, यदि वो काम कीजिए जो अच्छे लोग करते हैं, ये ना सोचिए कि ये लोग हमारी बात करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि बात को गौर से सुनना, जिसका जिक्र है ऐसे लोगों पे, लजीना यस्तमियून अलकौल फयत्तबियून अहसनहू, जो बात को कान लगाकर सुनते हैं फिर जो बेहतरीन बात हो इस पर अमल करते हैं, यही हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की और यही अक्लमंद भी हैं। भला जिस शख्स पर अजाब की बात साबित हो चुकी है तो क्या आप इसे जो दोजख में है छुड़ा सकते हैं? अधूरे जुमले हैं सूरत जुमर में, बस सवाल दे दिया, आगे जवाब खुद ढूंढो। तो बात फिर वही है, क्या करना है? कुछ और खूबियां हमारे सामने आई उलुल अलबाब की, बात को गौर से सुनना, मुतशबे खात में फितने नहीं तलाश करने, कुरान के इस हिस्से पे गौर करना है जो अमल से मुतल्लिक हो, जैसे मुहकम आयात, अपनी अक्ल से अच्छे बुरे और अच्छे में भी हसन और हसन से भी अहसन की पहचान रखनी है, यानी दी बेस्ट लेवल की नेकी करनी है। ऐसे लोगों को खुशखबरी है, हाँ वो लोग जो अपने रब से डरते रहे, इनके लिए बाला खाने हैं, जिनके ऊपर भी बने बनाए बाला खाने हैं और इनके नीचे नहरें जारी हैं। रब का वादा है और वो वादा खिलाफी नहीं करता। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला आसमान से पानी उतारता है और इसे जमीन की सोतों में यानी सुराखों तक में पहुंचाता है, फिर इसी के जरिए मुख्तलिफ किस्म की खेतियां उगाता है, फिर वो खुश्क हो जाती हैं, फिर आप इन्हें जर्द रंग में देखते हैं, फिर इन्हें रेजा रेजा कर देता है। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत ज्यादा नसीहत है, यानी जिंदगी का साइकिल पूरा हुआ और अब के सामने आ जाओगे जवाबदेही के लिए। अब करो क्या इस दुनिया में? एक दुआ करो कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। आप पारे के आखिर में दो खूबसूरत मिसालें हैं, शरह सदर और दईके सदर की। अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम, क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया, बस वो अपने परवरदिगार की तरफ से एक नूर पर है, और हलाकत है इन पर जिनके दिल जादे इलाही से असर नहीं लेते बल्कि सख्त हो गए, ये लोग सरीख गुमराही में मुबतला हैं। शरह सदर क्या होता है? ईमान का नूर दिल में दाखिल होता है, दिल में एक खुली जगह बनती है, दिल वसी होता है, अहकामात पर अमल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहती, दीन इस्लाम और इसके अहकामात से मोहब्बत होने लगती है, दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं रहती और दिल आखिरत की तरफ मायल होकर मौत से पहले उसकी तैयारी शुरू होती है। ये है आइडियल शख्सियत, वो शख्स जिसका सीना खुल चुका हो। अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों जैसा बना दे। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती जुलती और बार बार दोहराई हुई आयतों की है। कई दफा आपको लगता होगा ये आयतें तो हम पढ़ चुके, लेकिन बार बार अल्लाह इसलिए लाते हैं कि और गौर से सुनो, जिससे इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब का खौफ रखते हैं। आखिर में इनके जिस्म और दिल अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ नरम हो जाते हैं। कुरान सुनने के बाद दिल में नरमी आनी चाहिए, सख्ती नहीं। ये है अल्लाह ताला की हिदायत, जिसके जरिए जिसे चाहे राह रास्त पर लगा देता है और जिसे अल्लाह ही राह भुला दे इसका कोई हादी नहीं है। भला जो शख्स क़यामत के दिन के बदतरीन अजाब की ढाल अपने मुंह को बनाए होगा, ऐसे जालिमों से कहा जाएगा अपने किए का वबाल चखो, इनसे पहले वालों ने भी छुटलाया फिर इन पर वहां से अजाब आ पड़ा जहां से इनको ख्याल भी ना आता था, और अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखा दिया, और आखरत का तो बड़ा भारी अजाब है। काश ये लोग समझते, अल्लाह ना करे अगर वहां अजाब हो गया तो क्या बनेगा। और यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसालें बयान कर दी हैं कि आजब के वो नसीहत हासिल कर लें। कुरान है अरबी में जिसमें कोई कजी नहीं, हो सकता है कि वो परहेजगारी इख्तियार कर लें। अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमा रहा है कि एक वो शख्स जिसमें बहुत से बाहम जिद रखने वाले साझी हैं, ये बड़ी प्यारी मिसाल है तौहीद और शिर्क के फर्क की, और दूसरा वो शख्स जो सिर्फ एक ही का गुलाम है, क्या ये दोनों सिफत में यकसां हैं? अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ है, बात यह है कि इनमें से अक्सर समझते नहीं। यकीनन खुदा आपको भी मौत आएगी और ये सब भी मरने वाले हैं, फिर तुम सब क्यामत के दिन अपने रब के सामने झगड़ोगे। तो ये था पारा नंबर 23। क्या सीखा? आखिर में सूरत जुमर से बातिल अकायद की तरदीद की है, तख्लीके कायनात और अकीदे तौहीद को खूबसूरत तरीके से समझा, अल्लाह की इताअत हर हाल में लाजिम है, कुरान हकीम की तासीर बहुत ज्यादा है, फैसले क्यामत के दिन होंगे, सुनहरे हरूफ गोल्डन वर्ड्स, अंबिया हमारी आइडियल शख्सियत हैं, शख्सियत परस्ती के फितने से बचना है, ताग़ूत की बंदगी से इज्तनाब करनी है, मुखलिसीन अव्वाबीन और मुहसिनीन बनना है, क्यामत के दिन हमारे अज़ा गवाही देंगे इसलिए इनको सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, कुरान जिंदों के लिए किताब हिदायत है, इनको मरने वालों के लिए नहीं रखना, और अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करना है। शख्सियत परस्ती के फितनों से बचते हुए तागूत की बंदगी से इज्तनाब करना है। फितना तो पूरे पारे में देखा, अब इसके हल चंद जुमलों में ले लीजिए। शख्सियत परस्ती और तागूत की बंदगी एक फितना है, इस बात को समझना है। अपना मुहासबा करना और अकीदे को दुरुस्त रखना। ईमान वाले अल्लाह ताला से और फिर रसूलुल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं, इनकी इताअत करना है। अल्लाह और रसूल से ताल्लुक को मजबूत करने के लिए कुरान पाक का इल्म हासिल करना है। दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है। हर मामले में कुरान और शरीयत से रहनुमाई कर लेनी है। शख्सियत परस्ती के नुकसान के बारे में इल्म हासिल करना है। शख्सियात की पसंदीदगी में इतदाल पर रहना है। मेयार सिर्फ कुरान और सुन्नत और हदीस की कसवटी पर होगा, और गुमराह कुन शख्सियात की अंधी तकलीद गुमराही तक ले जाती है, इसलिए केयरफुल रहना है। अच्छे लोग और शख्सियात की अच्छी बातों को अपनाना है, तो फरकेबाजी से बचना है, और फिर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और इताअत, शरीयत की पाबंदी और इत्तेहाद मिल्लत से ही उम्मत को उरूज हासिल होगा, इस बात को याद रखना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।